तो आप सभी आज इस मनोरम वेला में एक्सेलेंस इन बिजनेस एंड इंडस्ट्री थ्रू स्पिरिचुअलिटी के इस कार्यक्रम में सभी पधारे हैं। अभी कुछ समय में हम इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। हम सभी के बीच हमारी दो मीठी बहनें ब्रह्मा कुमारी प्रतिभा बहन और ब्रह्मा कुमारी अमृता बहन, आप सभी का इस पूरे मंच पर संचालन करेंगी, इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे। इसलिए मैं दोनों बहनों को आमंत्रित करती हूँ, हमारी मीठी आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी प्रतिभा बहन तथा ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी अमृता बहन, दोनों को हम करतल ध्वनि से वेलकम करते हैं। ब्रह्मा कुमारी प्रतिभा बहन बाल्यकाल से ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं तथा पिछले 21 वर्षों से विलेपार्ले सेवा केंद्र सब जोन की तरफ से सेवाएं दे रहे हैं। उसी के साथ साथ बीएससीएस एमजी हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मैनेज बाय ब्रह्मा कुमारी अंधेरी में वे एडमिनिस्ट्रेटर और काउंसलर के रूप में अपनी अथक सेवाएं दे रहे हैं। इसी के साथ साथ हमारी अमृता बहन, जो कि जबलपुर से उन्होंने बीटेक किया है और 5 वर्षों से टीसीएस कंपनी में उन्होंने अपना वर्क का अनुभव लिया और उसके पश्चात पिछले तेरह वर्षों से अमृता बहन सबजोन विलेपार्ला सेवा केंद्र की ओर से वर्तमान समय में सेवाएं दे रही हैं। हमारी दोनों ही बहनें दयालु स्वभाव की, दृढ़ संकल्पधारी, सबकी मददगार तथा अमृत जैसी वाणी है जिनकी। ये बहनें दोनों ही कई प्रकार की प्रतिभाओं से सुसज्जित होकर पूरे विश्व में अनेक प्रकार की सेवाएं दे रहे हैं। इसी के साथ साथ हमारी ये दोनों बहनें बिजनेस और इंडस्ट्री विंग की बहुत ही प्रभावशाली फैकल्टी हैं, जो कि अनेक विषयों पर कई कंपनीज में और कॉरपोरेट सेक्टर्स पर प्रोग्राम्स कराते हैं। उनमें से कुछ विषय इस प्रकार हैं, जैसे कि पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर सक्सेस, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, हार्मनी इन रिलेशनशिप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, जैसे कई विषयों पर कई कंपनियों में हमारी इन मीठी बहनों ने कई प्रकार की सेवाएं प्रदान की हैं, जैसे कि एलएनटी लार्सन एंड टुब्रो, बीपीसीएल, रिलायंस, जिंदल, एलआईसी, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, रोटरी क्लब ऑफ मुंबई, लायन क्लब ऑफ मुंबई, मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट, नेशनलाइज्ड बैंक। इसी के साथ साथ दोनों बहनों की ये भी बहुत विशेषता रही है कि मानव कल्याण हेतु दोनों ही बहनों ने अनेक स्कूल्स और कॉलेजेस में एंटी ड्रग अवेयरनेस की कई प्रोग्राम्स किए हैं और कई भाई बहनों को इस ड्रग्स जैसे नशा मुक्ति अभियान में शामिल होकर के ड्रग्स से बचाया है। तो ऐसी दोनों ही बहनों को हम वेलकम करते हैं कि आगे आकर आप इस कार्यक्रम का संचालन करें। ओम शांति,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी का इस सुंदर ज्ञान सरोवर कॉम्प्लेक्स में, माउंट आबू में, परमात्मा के अपने घर में बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। तो आज के शुभ दिन की शुरुआत ये इनॉग्रल सेशन से हम करने जा रहे हैं। कुछ ही समय में हमारे कुछ वरिष्ठ दीदियां और कुछ गेस्ट आएंगे और हम इस प्रोग्राम का शुभारंभ करेंगे और आप सभी भी इस नैसर्गिक वातावरण का जरूर आनंद ले रहे होंगे। आप सभी आज ही पधारे हैं? कौन कौन आज आए हैं ज्ञान सरोवर? अच्छा, सभी आज ही आए हैं। कैसा लग रहा है आप सभी को? वातावरण में आते ही यहाँ के जो प्रकंपन है वो मन को जरूर सुगंधित कर रहे होंगे। तो आप सभी के आगमन में देखिए ना केवल परमात्मा का ये ईश्वरीय परिवार मधुबन, पावन भूमि का परिवार, परंतु प्रकृति भी जैसे आंख बिछाए आपका स्वागत कर रही है। तो इसी आगमन की कड़ी में और आप सभी के स्वागत में कुछ शब्द कहना चाहूंगी। प्रकृति के इस नैसर्गिक वातावरण में, सुंदर इन वादियों में, मनोहर गलियों में, महक उठा है हर मन, बज रहे हैं सितार हृदय के और दिल गा रहा है सुस्वागतम सुस्वागतम। अरावली की पहाड़ियों में, शीतल मंद हवाओं में, ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान सरोवर प्रांगण में, दिव्य रूहानी आभा मंडल में गूंज रहा है मधुर मृदंग सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। सभी का फिर से पुनः पुनः दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं प्रतिभा बहन को बुलाऊंगी कि वे स्वागत की कड़ी को आगे बढ़े।
ओम शांति। सभी एक बार बोलेंगे ओम शांति। आप सभी परमात्मा के घर में, आपके अपने ही घर में पहुंचे हो। जैसे कहा ना कि प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस अद्भुत ज्ञान सरोवर के प्रांगण में, और स्पेशल आपकी अगर विशेषता कहे तो आप सभी क्यों आए यहाँ पे, क्योंकि आध्यात्मिकता की रुचि है, तभी तो परमात्मा ने अपने घर यहाँ बुला लिया है। तो स्व उन्नति यहाँ जब हम रहेंगे आई है, तो अंदर से एक हो कि मेरी स्व उन्नति व परम लक्ष्य के लिए पधारना है। तो सभी महानुभाव, आप सभी कौन है परमात्मा के कौन है, बहुत ही लाडले, बहुत ही प्यारे। तो आप सभी का दिल व जान व सीख व प्रेम से हम सभी ब्रह्मा कुमारी की तरफ से आप सबका स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। अब इस प्रोग्राम का शुभ शुभारंभ करते हैं, तो आज मैं नम्र निवेदन करूंगी कि इस सभा तो इतनी सुंदर दिख रही है कि परमात्मा के ये चमकते सितारे, भले हम कलर है कोई वाइट है, लेकिन यहाँ जैसे आए तो भगवान के नूरे रतन बन गए, है ना। तो ऐसे आप चमकते सितारे, तो फिर भी आज इस परमात्मा स्टेज की शोभा बढ़ाने के लिए मैं कुछ मेहमानों को, जो हमारे मुख्य अतिथि, उनको आमंत्रित करते हूँ। सबसे पहले हमारी डॉक्टर निर्मला दीदी, जो कुछ ही समय में यहाँ पहुँच रहे हैं, जो आप जिस प्रांगण में बैठे हैं, इस प्रांगण की वो मुख्य संचालिका है, हमारी आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी। आदरणीय गीता दीदी जी, जो इस बिजनेस और इंडस्ट्री विंग की हेडक्वार्टर की कोऑर्डिनेटर हैं, आप भी इस मंच पर आ जाए। साथ ही साथ हमारी योगिनी दीदी, जो इस पूरे प्रोग्राम की हम कहेंगे बैकबोन, जिनके पूरे नेतृत्व में इस प्रोग्राम की हमने शुरुआत की थी और आज हम देख रहे हैं कितना सफल हो रहा है, तो योगिनी दीदी भी कुछ समय में यहाँ पहुंच जाएंगे। साथ ही साथ हमारे बीच अरुण कुमार सिंह, चेयरमैन ऑफ ONGC, रमेश पोद्दार भाई, मैनेजिंग डायरेक्टर सियाराम सिल्क, किशोर बियानी जी, फाउंडर एंड CEO ऑफ फ्यूचर ग्रुप पेंटालून रिटेल एंड बिग बाजार। साथ ही साथ हमारे आदरणीय KS राजू भाई जी, चेयरमैन नागार्जुना फर्टिलाइजर एंड केमिकल हैदराबाद, और हमारे नीरज भाई कोचर जी, CMD विराज प्रोफाइल, आप भी इस मंच पर आकर हमारी मंच की शोभा बढ़ाएंगे। साथ ही साथ चंद्रशेखर चोरे जी, जो जॉइंट कमिश्नर BMC, आप भी इस मंच पर आए और हमारे इस मंच की शोभा बढ़ाए। मैं सभी से निवेदन करूंगी, जिनके जिनके नाम लिए गए, हमारी बहनें प्लीज अपने मेहमानों को एस्कॉर्ट करें और अपने स्टेज पर लेके आए। हमारे मेहमान पधार रहे हैं। अंदर से आवाज आती है कि आप पधारे हैं, यहाँ हमारा सौभाग्य है, आप पधारे हैं, यहाँ हमारा सौभाग्य है। हमें बेहद खुशी है, क्या कहें, इतनी बेपनाह खुशी है कि हम आपके शुक्रगुजार हैं। भगवान के इस बगिया में हम आपका बारंबार स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे मोहन भाई पटेल, हरीश भाई भी अपनी स्टेज की शोभा बढ़ाएं। हमारी दोनों आदरणीय वरिष्ठ दीदियां कुछ समय में यहां पहुंच ही जाएंगे। कहते हैं कोई भी कार्य हो परमात्मा की याद के बिना करते नहीं है, तो आज का इस प्रोग्राम की शुरुआत हम परमात्मा की याद में रहकर शुरू करेंगे।
ईश्वर से जा प्रीत लगाए, बन जाए विचार शुभ कर्मों से जग में बनता सबसे महान, जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए अपना जहान, सुंदर रचता अपना जहान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान, बन जाए।
ओम शांति। कितना सुंदर कि ईश्वर से जो योग लगाए बन जाए वो गुणवान. तो यहाँ वही है. तो हम तालियों से हमारे मंच पर आसीन हमारे मेहमानों का वेलकम करेंगे. हमारे बीच हमारी आदरणीय दोनों दीदियाँ डॉक्टर निर्मला दीदी और योगिनी दीदी भी पहुँच गए हैं. तो एक बार हम वापस जोरदार तालियाँ. देखो वातावरण में कितना सुंदर प्रभाव पड़ता है. और साथ ही साथ मैं हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों को अनुरोध करूंगी कि हमारे मंचासीन मेहमानों का तुलसी पॉट तिलक और बैच लगाकर वेलकम करें. साथ ही साथ आप सभी भी जहां बैठे हैं वहां एक आत्मिक स्मृति का तिलक हम लगाएंगे कि चंदन का तिलक लगाया जा रहा है. ये चंदन शांत शीतल, तो हम सभी ऐसे शांत शीतल चमकते हुए सितारे जो चंदन समान अपने गुणों की खुशबू यहाँ से जाकर हम सारी दुनिया में फैलाएंगे अपने कर्म अपने गुणों के द्वारा. और जो तुलसी पॉट दिया जा रहा है वो एक प्रतीक है कि एक निरोगी एक स्वस्थ हेल्दी के लिए तुलसी लिया जाता है. तो यहाँ जब हम आए हैं ना कि सिर्फ तन लेकिन मन को ऐसे हम तंदुरुस्त बनाएंगे कि जहाँ मन निरोगी तो ये तन ऑटोमेटिक हमारा निरोगी होने ही वाला है. तो सिर्फ मंचा सिंह को नहीं लेकिन आप सभी का भी मन से हम तिलक लगाते हैं. और तिलक लगाया मना ऐसे ही कि हम इस चंदन का शांत और शीतल के चमकते हुए हम ऐसे ये सितारे हैं. और यहाँ जब आए हैं तो ये लक्ष्य हमारा रहेगा कि हमको अपने मन को इतना शक्तिशाली बनाना है कि चंदन के समान हम अपने गुणों की खुशबू हमारे वर्क प्लेस पर फैलाएंगे. हम सभी तालियों से भी इनका वेलकम कर सकते हैं. तालियां बजे उतना अच्छा है. हम कार्यक्रम की सत्र को आगे बढ़ाते हैं. कितना सुंदर प्रकृति भी आपका वेलकम कर रही है यहाँ पे. सभी चाहते हैं कि हम हमारे मेहमानों का कितना ना वेलकम करें कि जी अब मेहमान नहीं आप अपने घर के इस परिवार के इस ईश्वरीय परिवार के बन गए हो. कहते हैं कि सारे विश्व में प्रख्यात है कि परमात्मा ने गीता ज्ञान द्वारा जीवन जीने की कला सिखाई और जीवन की हर परीक्षा में जीत पाने का हुनर भी सिखलाया. ऐसे ही आज हम सबका मन पावन करने के लिए अपने अनुभवों से हम सब की झोली भरने के लिए आज हमारे बीच गीता में जो वर्णन है जो वर्णित श्लोक है उसकी जीती जागती प्रतिमूर्त हमारी गीता दीदी जी जिनके बारे में हम कहे कि 1969 अर्थात आपने अपने 14 साल की कोमल आयु छोटी आयु में ही ब्रह्मा कुमारी संस्था के आप संपर्क में आए. आप बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग की हेडक्वार्टर की कोऑर्डिनेटर है. आप एक कुशल सीनियर राजयोगा टीचर है. आप आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सक्सेस न्यू डायमेंशन स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट इत्यादि अनेक विषयों पर आपके व्याख्यान होते हैं. आपने देश विदेशों में अपने व्याख्यानों द्वारा कई ईश्वरीय सेवाएं की हैं. आपके द्वारा लिखे गए लेख अखबार पत्रिकाएं इनों में छपते आए हैं. साथ ही साथ दैनिक जागरण संस्कार एवं आस्था चैनल में भी आपके प्रवचन प्रसारित होते हैं. भारत के अनेकानेक स्थानों पर आध्यात्मिक मेलों का आयोजन तथा संचालन करने का आपको विशेष अनुभव है. और दीदी जी से हम नम्र निवेदन करेंगे कि आप अपने मधुर भाषी पुष्पों द्वारा सभी माननीय अतिथियों का सम्माननीय भाई बहनों का स्वागत करें. ब्रह्मा कुमारी द लार्जेस्ट वुमेन रन ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड एक ऐसी विशाल संस्था जिसकी शाखाएं आज सारे विश्व में फैल रही हैं, जन जन का कल्याण कर रही है. दीदी जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वे ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर में स्थित इस अद्भुत ज्ञान सरोवर कॉम्प्लेक्स से हम सभी को वाकिफ कराए। आदरणीय गीता दीदी,
ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। शांति के सागर, सर्व के सुखदाता, नव विश्व निर्माता, परमपिता शिव परमात्मा की प्रिय संतानों, आत्मीय बहनों एवं भाइयों, मंचासीन परम आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला दीदी जी, परम आदरणीय राजयोगिनी योगिनी बहन जी, हमारे सभी सम्माननीय मेहमान ब्रह्मा कुमार मोहन भाई जी, और आज के कार्यक्रम का संचालन करने वाली हमारी प्रतिभा बहन और अमृता बहन, भारत के विभिन्न स्थानों से पधारे हुए, व्यापार और उद्योग क्षेत्र से जुड़े हुए आप सभी भाई बहनों का इस ज्ञान सरोवर के पावन मन भावन परिसर में हार्दिक स्वागत है। हमें खुशी है कि आप सभी अपने व्यस्त व्यावहारिक और व्यावसायिक जीवन से समय निकाल करके यहाँ पधारे हैं। आपका यहाँ आना ही सूचित करता है कि आप सबको पिता परमात्मा से, अध्यात्म से और भारत की प्राचीन विद्या योग से प्यार है। अनेक व्यावहारिक, व्यावसायिक, धार्मिक, सामाजिक कार्यों के लिए कई स्थानों पर आप गए होंगे, पर यहाँ आपका आना हुआ है अपनी आत्म उन्नति के लिए। और जब हम उन्नत स्थिति को प्राप्त करते जाते हैं तो स्वाभाविक है कि जिस भी क्षेत्र में हम कार्य करते हैं उस कार्य क्षेत्र को भी इससे लाभ होता है। विद्यालय से जुड़े हुए हजारों व्यापार और उद्योग क्षेत्र के भाई बहनों के अनुभवों से मैं बता सकती हूँ कि जब से वे इस आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग का अभ्यास करते हैं, इससे उनके आंतरिक आत्मशक्तियों का और नैतिक मूल्यों का इतना विकास होता है कि वे अपने क्षेत्र में या अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियों को बहुत सहज पार कर सकते हैं और बहुत ही खुशी आनंद का अनुभव कर सकते हैं। ये अनुभव आप सभी भी करें और व्यापार में प्रगति करते हुए, सफलता के शिखर पर पहुंचते हुए भी अपनी आत्मिक उन्नति भी करें और जीवन में बहुत ही आनंद सुख का अनुभव पाएं। इसलिए ही आप सबको यहाँ आमंत्रित किया गया है। मैं हमारी परम आदरणीय दादी रत्न मोहिनी जी, इस कैंपस की डायरेक्टर दीदी डॉक्टर निर्मला जी और इस विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर योगिनी बहन जी तथा हमारे हेडक्वार्टर के सभी वरिष्ठ भाई बहने और समर्पित भाई बहनों की ओर से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ, सत्कार करती हूँ, अभिवादन करती हूँ। विद्यालय से तो आप सभी जुड़े हुए ही हैं। मैं समझती हूँ आप सभी विद्यालय और उनकी गतिविधियों से परिचित होंगे ही, फिर भी संक्षिप्त में बताना चाहूंगी कि आज से 86 वर्षों पूर्व 1936 में सिंध हैदराबाद में स्वयं परमपिता परमात्मा ने पिता श्री ब्रह्मा बाबा के माध्यम द्वारा इस विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये कोई नया धर्म नहीं है, कोई अलग से संप्रदाय नहीं है, कोई मठ पंथ नहीं है, यहाँ कोई गुरु शिष्य की प्रथा नहीं है। धर्म अध्यात्म योग के नाम पर यहाँ कोई क्रियाकांड नहीं है, कोई बाह्याचार नहीं है। ये एक आध्यात्मिक शिक्षा है जो हमारे व्यावहारिक जीवन को श्रेष्ठ सुसंस्कारी बनाने के लिए है। जैसे एक बीज को हम सींचते हैं, क्वालिटी बीज लेते हैं, तो अपने आप सुंदर वृक्ष उगता है और वो फल भी बहुत ही पौष्टिक और सुंदर देता है। इसी प्रकार यहाँ हम चैतन्य शक्ति आत्माओं को ज्ञान और योग से सींचा जाता है, उत्कृष्ट बनाया जाता है, जिससे जीवन के हर क्षेत्र में बहुत ही सुंदर सफलता हमें मिलती है। तो प्रारंभ में ही लगभग 400 जितनी बहनें माताएं, कुछ परिवार कुछ भाई इस विश्वविद्यालय में इस ज्ञान यज्ञ में समर्पित हुए और लगातार 14 वर्षों तक उन्हों को सघन प्रशिक्षण दिया गया, तपस्या कराई गई, उनके प्रैक्टिकल जीवन को आध्यात्मिकता का रंग दिया गया। जब वे परिपक्व हुए आध्यात्मिक दृष्टि से तो 1950 में यह विश्वविद्यालय विश्व सेवा के लक्ष्य से भारत में स्थानांतरित हुआ। तब से माउंट आबू इस विश्वविद्यालय का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है। आप सभी भी अवश्य हमारे ओरिजिनल कैंपस पांडव भवन को विजिट करेंगे, जहां पिता श्री ब्रह्मा बाबा हमारी सीनियर मोस्ट दादियां, उनकी ये तपोभूमि और कर्म भूमि रही। 1952 से ईश्वरीय सेवा का कार्य आरंभ हुआ। दिल्ली में यमुना के कंठे पर पहला सेवा केंद्र खुला। भारत के विभिन्न शहरों में पंजाब, यूपी, बिहार, बंगाल, बॉम्बे, बेंगलोर में हमारे प्रारंभ में सेवा केंद्र खुले। उस समय विद्यालय के पास ना कोई इतने संपर्क थे, ना कोई धन साधन इतने थे, परंतु इन दादियों के पास, इन बहनों के पास सत्य ज्ञान की पूंजी थी, योग साधना का तेज था, सेवा की भावना थी और सत्य ज्ञान की स्पष्टता थी। इस अलौकिक संपदा को लेकर दादियों ने सेवा प्रारंभ की और विभिन्न स्थानों पर सेवा केंद्र खुलते गए। यहाँ जो भी भाई बहने आते हैं उनको फर्स्ट टाइमर्स जो आते हैं, विजिटर्स जो आते हैं, उनको विद्यालय का जो मूलभूत ज्ञान है उनका राजयोग फाउंडेशन कोर्स कराया जाता है। उस कोर्स को करने से ही उनको क्लैरिटी हो जाती है कि अब तक जो हम करते रहे, पढ़ते रहे, सुनते रहे वो क्या है और परमात्मा आकर के जो ज्ञान देते हैं वो क्या है। जब उनको निश्चय हो जाता है तो उनका लक्ष्य बन जाता है कि इस ज्ञान को मुझे अपने जीवन में धारण करना है। फिर वे नियमित रूप से ज्ञान और योग का क्लास करने आते हैं। इस ज्ञान और योग से ही आत्माओं में इतनी अवेयरनेस आती है, इतनी शक्ति आती है कि वे अपने जीवन में इस ज्ञान की धारणा करते हैं और फिर इस ईश्वरीय सेवा कार्य में मददगार बन जाते हैं। पिता श्री ब्रह्मा बाबा के होते सिर्फ 150 केंद्र थे। उसके बाद हमारी दादियों ने, इन दीदियों ने देश विदेश में सेवा की। आज मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि लगभग 10-12 हजार से भी अधिक सेवा केंद्र, उप सेवा केंद्र, ब्रह्मा कुमारी पाठशालाएं समग्र भारत वर्ष में लगभग बड़े शहरों, तहसीलों और गांवों में हैं, जो निशुल्क रूप से समाज की आध्यात्मिक और सामाजिक सेवा का कार्य करते हैं। हमारे जैसी भी लगभग 21,000 से अधिक समर्पित बहने हैं जो विभिन्न सेवा केंद्रों में रहकर सेवा कार्य करते हैं। परमपिता परमात्मा शिव का पिता श्री ब्रह्मा बाबा को यह आदेश रहा कि अब तक धर्म का कार्य भाइयों से हुआ, परिणाम स्वरूप एक पुरुष प्रधान समाज बनता गया, इसलिए फिर से भाइयों और बहनों, स्त्री और पुरुष में फिर से आध्यात्मिक समानता लाने के लिए यह आध्यात्मिक कार्य बहनों के द्वारा, माताओं के द्वारा किया जाए। इसलिए इस विश्वविद्यालय की प्रमुख प्रशासिका से लेकर हर जोन, सब जोन, सेवा केंद्र, उप सेवा केंद्रों के संचालन के लिए अधिकतर बहने निमित्त है। आध्यात्मिकता हर आत्मा को स्पर्श करती है, इसलिए विद्यालय की तटस्थ आध्यात्मिक सेवाओं को देखते हुए यह विश्वविद्यालय संयुक्त राष्ट्र संघ में भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उनकी पब्लिक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में एफिलिएटेड हैं। विद्यालय यूनो में कंसल्टेटिव A1 स्टेटस से अपना कार्य कर रही हैं और विश्वव्यापी सेवा कर रही हैं। प्रति वर्ष विभिन्न आध्यात्मिक विषयों को लेकर जो हमारे जीवन से संबंधित हों, संबंधों, कार्यक्षेत्र और व्यवहार से संबंधित हों, ऐसे विषयों को लेकर सेवा की जाती है और यह विश्वविद्यालय एक पारिवारिक रूप से चल रहा है। हमारे हर सेवा केंद्र आर्थिक रूप से सेल्फ डिपेंडेंट हैं, क्योंकि हमारे सभी सेवा केंद्र आमंत्रण पर खुलते हैं। जो निमित्त बनते हैं प्रथम 2-3 वर्ष खर्च पुलौन करते हैं और फिर वहां लाभ लेने वाले भाई बहने बहुत ही विलिंगली वॉलंटियरी कंट्रीब्यूट करते हैं और विद्यालय को चलाते हैं। इसलिए विद्यालय को कोई गवर्नमेंट ग्रांट्स नहीं लेनी पड़ती है, कोई फंड्स रेज नहीं करने पड़ते हैं। सर्व के सहयोग से ये सुखमय संसार चल रहा है और सेवा कार्य कर रहा है। हमारा हेडक्वार्टर भी हमारे सभी केंद्रों के सहयोग से चलता है, इसलिए एक पारिवारिक फीलिंग से ये सारा कार्य हो रहा है। कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है। यहाँ जो भी ज्ञान योग की स्टडी अध्ययन किया जाता है, एक लक्ष्य से किया जाता है कि हमें अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। ज्ञान सरोवर के इस सुंदर प्रांगण में आध्यात्मिकता द्वारा व्यापार और उद्योग में उत्कृष्टता के विषय को लेकर आप सबके लिए कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है। हमें आप सबके लिए बहुत शुभकामना है और यही भावना है कि मुश्किल से जीवन में ऐसा मौका हमें मिलता है, अवश्य ही आप सभी पूरा लाभ उठाएंगे और इस सुंदर प्राकृतिक और आध्यात्मिक वातावरण में योग की अलौकिक अनुभूति करेंगे। मैं पुनः मंचासीन महानुभाव और सभा में उपस्थित आप सभी महान आत्माओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। ओम शांति।
थैंक यू दीदी जी, आपने बहुत ही सुंदर विस्तृत रूप से संस्था की जानकारी हमारे समक्ष रखी बहुत ही स्पष्ट रूप से। और अब आप सभी और हमारे मंचासीन महानुभावों के स्वागत के लिए मैं कुमारी आयशा को बुलाना चाहूंगी, जो कि बहुत सुंदर स्वागत नृत्य लेकर आ रही है। नृत्य एक ऐसी कला है जो मन के उद्गारों को स्पष्ट करती है, सजीव करती है। तो ऐसे ही दिल के उद्गार लेकर कुमारी आयशा नागवानी, जो कि बचपन से ही इस संस्था से जुड़ी हुई है, राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करती है और NMIMS यूनिवर्सिटी मुंबई से BCOM फर्स्ट ईयर परस्यू कर रही है, कथक नृत्य में भी पारंगत है। तो आयशा कृपया मंच पर आओ।
ओम शांति। आप सभी के समक्ष नृत्य प्रस्तुत हो, उससे पहले हम हमारी दोनों मीठी बहनें जो इस मंच का संचालन कर रही हैं, उनका तिलक और बैच लगाकर वेलकम करते हैं, अभिनंदन करते हैं।
बहुत बहुत सुंदर आयशा, कुमारी आयशा ने बहुत सुंदर किया। हम सत्र की आगे बढ़ते हुए परमात्मा प्रेरणाओं से आज से कई सालों पहले बिजनेस में इंडस्ट्री विंग की शुरुआत हुई। समय बीतता गया, कारवा जुड़ता गया, सभी के अथक प्रयासों के फल स्वरूप ये विंग आज एक विशाल वट वृक्ष का स्वरूप धारण कर चुका है। इस विंग की सेवाओं के बारे में हम सभी को अवगत कराने के लिए हम बुलाना चाहेंगे हमारे आदरणीय भ्राता हरीश मेहता जी को, और साथ ही साथ ये जो प्रांगण में हम बैठे इस प्रोग्राम का जो लक्ष्य है, उनकी जो रूपरेखा है, उसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हरीश भाई जी को। हरीश भाई, आप 2003 से ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़े हैं। विलेपार्ले मुंबई सेवा केंद्र पर आप नियमित रूप से राजयोग का अभ्यास करते हैं। पिछले 20 साल से ब्रह्मा कुमारी के राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत व्यापार एवं उद्योग प्रभार की सभी मुख्य जो कार्यक्रम है उनका आयोजन तथा संचालन में आपकी मुख्य भूमिका होती है। माउंट आबू मुख्यालय में आयोजित जितने भी कॉन्फ्रेंस ट्रेनिंग उन संचालन का आप कुशलतापूर्वक उनका संचालन करते हैं। आपने मुंबई आईआईटी से एक एमटेक की डिग्री प्राप्त की है। मुंबई सेंट जेवियर्स से आपने बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री प्राप्त की। प्रोफेशनली आप चार्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड फेलो ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर है। आप पिछले 40 वर्षों से मुंबई में पावर लिंकर कंपनी के नाम से कंसल्टिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बिजनेस कर रहे हैं। इस कंपनी के आप सीईओ हैं। कंपनी द्वारा भारत के कॉरपोरेट सेक्टर और विदेश में गल्फ तथा इंडोनेशिया के आप प्रोजेक्ट चलाते हैं। आध्यात्मिकता और राजयोग के अभ्यास से आपने व्यक्तिगत और प्रोफेशनल जीवन में श्रेष्ठ परिवर्तन अनुभव किया, और बिजनेस के निमित्त आप देश विदेश में भ्रमण करते हैं। इतना व्यस्त रहते हुए भी समय निकालकर आध्यात्मिक सेवा में उपस्थित रहे और इस कार्यक्रम का वो साथ देते हैं, तो मैं अनुरोध करूंगी भ्राता हरीश मेहता जी को।
ओम शांति। आदरणीय परमपिता परमात्मा ब्रह्मा बाबा, निर्मला दीदी जी, योगिनी बहन गीता दीदी जी और हमारे आज के मंचासीन सभी गणमान्य बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट और सभा में हाजिर हमारे सभी मेहमान कहूँ नहीं, हमारे भाई बहनों का अंतर मन से बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मैं दो बातें आप लोगों को बताना चाहूंगा, और संक्षिप्त में और फास्ट भी, समय बहुत कम है। एक तो बिजनेस इंडस्ट्री विंग के बारे में, और दूसरा के आपके ये चार दिन के अगले चार दिन के कार्यक्रमों की सूची, जिससे आप सुचारू रूप से ये कार्यक्रम पूरा अटेंड कर सके। तो पहले तो बिजनेस इंडस्ट्री विंग का नाम सुनते ही शायद आप सभी के मन में आएंगे कि हमने तो सुना था ब्रह्म कुमारी एक आध्यात्मिक संस्था है, और उन्हें ये बिजनेस इंडस्ट्री विंग से क्या लेना देना, नंबर वन। नंबर टू, अगर कुछ करते भी है तो क्या करते हैं और कहाँ करते हैं और उनके क्या प्रोग्राम्स होते हैं, क्या सेवाएं होती है, यस इट्स अ बिग क्वेश्चन। तो पहले तो आप हमें जानते हैं ब्रह्म कुमारी के बहुत छोटे नाम से, ब्रह्म कुमारी कहाँ जा रहे, बोलो ब्रह्म कुमारी। लेकिन अगर आते हुए या कहाँ बाहर में आपने हमारा पूरा नाम देखा होगा, तो पूरा नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। और गीता दीदी ने भी दो चार बार अपने वक्तव्य में कहा कि ये एक विद्यालय है, और विद्यालय जब हम कहते हैं इट्स ए स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, यानी कि यहाँ कोई प्रकार की पढ़ाई होती है। यस, सचमुच में यहाँ ईश्वरीय ज्ञान की इनडेप्थ पढ़ाई होती है और ये पढ़ाई जैसे दीदी ने कहा वे सारे विश्व में हमारे 140 देशों में जितने भी सेवा केंद्र है वो सभी सेवा केंद्रों में ये गुह्य ईश्वरीय ज्ञान की पढ़ाई पढ़ाते हैं। और क्या पढ़ाई पढ़ाते हैं, हमारे एम ऑब्जेक्ट क्या है, लक्ष्य क्या है और क्या पढ़ते हैं। एम ऑब्जेक्ट बहुत ऊंचे है, हमें मनुष्य से देवता बनना है, हमें नर से नारायण बनना है और नारी से लक्ष्मी बनना है, हमें संसार कैसा बनाना है वो हमारे एम ऑब्जेक्टिव है कि सर्व के सहयोग से एक सुखमय संसार की स्थापना हो। हम बदलेंगे जग बदलेगा, नहीं कि जग बदले तो हम बदले, इट्स रिवर्स। हम बदलेंगे जग बदलेगा और इस पुरानी कलयुगी दुनिया से हम कहां जाना चाहते हैं, हम एक सतयुगी सुखमय दुनिया में जाना चाहते हैं। और हम सीखते क्या है, बहुत छोटी छोटी जीवन जीने की कला के बारे में सीखते हैं। और जैसे कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ के बोलो और जरूरत है तो बोलो, बिना जरूरत के मत बोलो। आज जानते हो आप कि किसी ने कहां कुछ कह दिया और उनके लिए 2 साल की जेल डिक्लेयर हो गई, तो क्या किया, सोचा नहीं, समझा नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो निंदा हो, स्तुति हो, मान हो, अपमान हो, फायदा हो, घाटा हो, बट सभी परिस्थितियों में हम अचोल और अडोल रहे, हम हमारी स्थिति डिस्टर्ब नहीं करें। और इससे कितने सारे एम, ऑब्जेक्टिव, लक्ष्य और पढ़ाई हम पढ़ते हैं जिसको मैं डिस्क्राइब करने जाऊं तो आपके पूरे 5 दिन निकल जावे। तो इस पढ़ाई को संस्था ने ये सोचा कि हम हमारे तक क्यों सीमित रखें, हम पूरे समाज को साथ में लेके चले, पूरे समाज में इसे पहुंचाए, तो कैसे करें कि समाज के सभी वर्ग को साथ में लेके चले। एक वर्ग है जैसे आप व्यापार और उद्योग से सभी लोग आए हैं, तो वैसे ही राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन की एक फाउंडेशन की स्थापना करके उसके अंतर्गत अलग अलग विभागों की स्थापना की, जैसे कि सोशल विंग है, मेडिकल विंग है, स्पोर्ट्स विंग है, रिलीजियस विंग है, विमेन्स विंग है, आईटी विंग है, उसमें से एक है बिजनेस और इंडस्ट्री विंग। अभी जब बिजनेस इंडस्ट्री विंग के साथ में आए तो आपने यहां का टाइटल भी तो देख लिया कि एक्सेलेंस इन बिजनेस थ्रू स्पिरिचुअलिटी। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू बिजनेस एंड इंडस्ट्री, और आध्यात्मिकता द्वारा हम इसमें कैसे कुशलता पाए। सो इट वुड बी वन एम वन थीम। इसी प्रकार जूरिस्ट वाले, इसी प्रकार मेडिकल वाले, इसी प्रकार आईटी विंग वाले अपना अपना ध्येय लेके आते हैं। तो आप सभी बिजनेस और इंडस्ट्री विंग के आमंत्रण पर यहां आए हैं। तो बिजनेस विंग करती क्या है, बिजनेस विंग जब आज के इस दौर में हम जानते हैं कि इकोनॉमी बहुत बड़ी स्ट्रेस में है, दुनिया के कोई पार्ट में जबरदस्त स्ट्रेस में है, भारत अपनी 5 ट्रिलियन की दौड़ में आगे जा रहा है, लेकिन उसके अंदर में व्यक्ति का, उसकी आत्मा का, उसके शरीर का क्या हो रहा है वो भी हमें साथ साथ में देखना है। तो बिजनेस इंडस्ट्री विंग इसी तरह कॉरपोरेट जगत में कई प्रोजेक्ट्स लेती है और वो प्रोजेक्ट्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके जो एम ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसे हम स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म के ऊपर से उसे रिजॉल्व करते हैं, उसका सॉल्यूशन कहते हैं। कैसे होता है, जैसे एक बहुत बड़ी कॉरपोरेट कंपनी ने हमें एक प्रोजेक्ट दिया कि वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द नेक्स्ट जनरेशन लीडर हु हैज ए स्टेबल पर्सनैलिटी एंड इनेट क्वालिटी। टेक्निकली मुश्किल बात है, आध्यात्मिकता की दृष्टि से इजी है। और एक कंपनी में कि हमारे यहां बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, डॉक्टरेट्स हैं, लेकिन जब मीटिंग में बैठते हैं, जब कार्य में बैठते हैं, तो सभी एक दूसरे से ध्यान से नहीं देखते। उनका ईगो अटकता है क्योंकि सभी पढ़े लिखे हैं। हाउ टू ब्रिंग डाउन उनको जो देहाभिमान है, ईगो है, वो कैसे करें। और एक न्यूक्लियर प्लांट के बगल में 2 किलोमीटर पर 10,000 लोगों की उनकी कॉलोनी है। एंड द प्रॉब्लम वॉज रात को नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? यू आर नेक्स्ट टू न्यूक्लियर प्लांट। तो जैसे आप भी अगले 3 दिन में राजयोगा सीखेंगे और वो सीखने में आपको ये सभी बातों का आपको सोल्यूशन मिलेगा। और हमारी बहनें जाके क्या कराती है? काउंसिलिंग कराती है, अलग अलग प्रकार के आध्यात्मिक कोर्स कराती है। जैसे शुरू में कहा, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, हार्मनी इन रिलेशनशिप, ये सब हम भूलते जा रहे हैं, लेकिन उसे उजागर करके आगे करना है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्फ ओरिएंटेशन वर्कशॉप्स, 2 घंटा, 2 दिन, कहीं कहीं 2 वीक तक हम ये सब करते हैं। और ये सभी प्रोग्राम कोई भी हो, कहां भी हो, ध्यान रखिए, सभी निःशुल्क और फ्री करते हैं। और ये मैं नाम तो नहीं लूंगा बिकॉज इट्स अ लॉन्ग लिस्ट, बट भारत की सभी बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनीज में बड़े बड़े पावर प्लांट्स, फर्टिलाइजर, सीमेंट प्लांट्स, स्मेल्टर्स, सभी जगह में ये प्रोग्राम्स हम करते हैं। और इसी तरह ये बिजनेस इंडस्ट्री परमात्मा के गाइडेंस में हम रोज बरोज आगे जा रही है। ऑफकोर्स इसका बिजनेस विंग का काफी बड़ा विस्तार है, और जैसे मैंने कहा कि डिटेल में बात करें तो शायद पूरा सेशन मैं लेना चाहूंगा। नेक्स्ट, अगले 4 दिन का हमारा कार्यक्रम क्या रहेगा? किसने बहुत ध्यान से अपनी कार्य सूची या प्रोग्राम स्केड्यूल पढ़ी है? कितने लोगों ने पढ़ी है? अच्छा, कितने लोगों को कार्य सूची मिल गई है, प्रोग्राम स्केड्यूल? और दैट्स ग्रेट। अच्छा, जिसको नहीं मिली है, तो आप सभी को मालूम हो कि हम पेपर कम्युनिकेशन बहुत कम कर दिया है। हमने एक कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, और जो जो पार्टिसिपेंट्स यहाँ आए हैं उन सबके मोबाइल नंबर से आप सभी को रिक्वेस्ट किया था कि आप ज्वाइन हो जाइए। तो इसके अंतर्गत हम आपको जो जो प्रोग्राम्स होंगे उनके कार्य की सूची, जो चेंजेस होंगे, जो आगे के इंस्ट्रक्शंस होंगे, वो सभी आपको उसी व्हाट्सएप ग्रुप, कम्युनिटी ग्रुप जो बनाया है, उसके द्वारा आपको सूचित करते जाएंगे। अगर किसी को कोई भी डिफिकल्टी हो वो ग्रुप को ज्वाइन करने में, तो इस हार्मनी हॉल के ग्राउंड फ्लोर ऊपर कॉन्फ्रेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस है, वहां आप आ जाइए। हमारे सभी भाई हैं उधर, वो आपको मदद करेंगे, बट वो होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो अगर किसी को कोई डिफिकल्टी है तो डेफिनेटली आपको जुड़ना जरूरी है। अच्छा, अब मैं बताने जा रहा हूं आपकी फर्स्ट एक्टिविटी एवरीडे क्या रहेगी। फर्स्ट एक्टिविटी इसी हॉल में सुबह में 4 बजे, ध्यान से सुनिए, सुबह में 4 से 4:45, काफी चेहरों पर मैं देख रहा हूं हंसी आ रही है, मुस्कान आ रही है, बट इट इज पॉसिबल, और आप जरूर करेंगे। यहां अमृत वेला योग होगा, हमारी बहनें कमेंट्री द्वारा आपको ये योग कराएगी। एंड दिस इज द वन विच इज पावरफुल, जो कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त के अंदर में परमात्मा से जो योग लगाएंगे वो शक्तिदायक, गुणदायक और बहुत ही पावरफुल रहेगा। उसके पश्चात 4:45 के पश्चात आपका 7 मॉर्निंग तक ब्रेक रहेगा। उसके पश्चात 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक आपके इसी हॉल के अंदर में क्लासेस रहेंगे, एक्सेप्ट 8:30 to 9:30 ब्रेकफास्ट और टी कॉफी के लिए आपका ब्रेक रहेगा। दोपहर में 1 से 4 आपका लंच और रेस्ट रहेगा। 4 से 4:15 तक 15 मिनट फिर से दोपहर की चाय कॉफी का समय रहेगा, और फिर शाम को 4:30 से 7:30 बजे तक इसी हॉल में आपके क्लास रहेंगे। लेकिन दो दिन 23 तारीख और 24 तारीख शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक आपका नुमा शाम का योग, नुमा शाम का योग यानी इवनिंग का जो योग होता है वो आपको हम हमारे दादी जानकी पार्क में ले जाएंगे एंड यू विल रियली रिलिश इट एंड एक्सपीरियंस होगा। आपकी कार्य सूची के अंदर में 8 राजयोगा के सत्र है एंड विनंती ये रहेगी कि आप एक भी सत्र मिस न करें। इट इज वेरी मच नेसेसरी दैट दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए और यही ईश्वरीय ज्ञान की मुख्य शिक्षा है, तो आप जरूर समय निकालें। साथ में संस्था का इतिहास आपको गीता बहन जी सुनाएगी, उसके पश्चात काफी सारे इंटरेक्टिव सेशंस हैं हमारे वरिष्ठ भ्राता सूरज भाई जी का, हमारी वरिष्ठ बहन सुषमा बहन जी का, शिवानी बहन का, डॉक्टर प्रेम मसन जी का और ब्रदर गिरीश भाई के क्लासेस रहेंगे एंड यू विल रियली एंजॉय देम एंड अगेन एज आई सेड रिलिश देम। आप जो जो स्थान से यहाँ आए हैं, आए माउंट आबू में आए और वापस जाएंगे तो लोग पूछे तो सही कि भी आप वहां क्या करके आए, लेकिन साथ में पूछेंगे कि आपने साइट सीइंग किया, दिलवाड़ा मंदिर देखा, पीस पार्क देखा, जरूर पूछेंगे एंड आप कहना चाहेंगे कि यस। तो इसके लिए 25th को मॉर्निंग 9 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक आपका साइट सीइंग का पूरा प्रोग्राम रखा हुआ है। तो रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप कोई भी आपके जो रेगुलर क्लासेस है वो उसे छोड़ के मत जाइए और ये जो साइट सीइंग का प्रोग्राम में है उसके अंदर में जैसे गीता दीदी ने बताया हमारा जो हेडक्वार्टर कॉम्प्लेक्स है पांडव भवन, जो ब्रह्मा कुमारी द्वारा चलाए जाने वाली GHRC हॉस्पिटल वो भी उसकी आइटनरी के अंदर में शामिल है। मैं संपूर्ण करूं उसके पहले थोड़े इंस्ट्रक्शंस, आपके सभी के पास में मोबाइल्स रहेंगे तो क्लास में एंटर होते समय में आप उसे साइलेंट या वाइब्रेशन मोड में रखें। हर एक सेशन सत्र चालू होने के पहले हम परमात्मा की याद में बैठेंगे, लाइट्स वुड टर्न टू रेड, ये सिंबल है कि हम सभी परम धाम में ईश्वर परमपिता परमात्मा से योग लगा रहे हैं, तो जाहिर है कि वो समय में कोई इंटरपर्सनल डिस्कशन बातें आवाज नहीं होगा और मोबाइल तो जाहिर है कि वो ऑफ ही रहेंगे और सत्र अंत होने के बाद में भी हम परमात्मा की याद में बैठेंगे तो उस समय भी साइलेंस रखना। बीच में आपको निर्धारित समय पे व्हाट वी कॉल इट एज ए ट्रैफिक कंट्रोल वो भी बजेगा, जो स्केड्यूल प्रेयर टाइम है, स्केड्यूल परमात्मा को याद करने का समय है तो वो भी आपको उसी समय में पता पड़ जाएगा, तो आप ध्यान रख के शांतिता बनाए रखें। वी विल रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप जरूर से कॉन्फ्रेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस में ग्राउंड फ्लोर हमें अप्रोच करिए। ऐसा कोई है सभा में जिसको हिंदी समझ में नहीं आती हो और उसे ट्रांसलेशन की जरूरत हो, एनीबॉडी एनी लैंग्वेज? हमारे पास में कम से कम 25 से 30 भाषाओं में ट्रांसलेशन करने की सुविधा है, तो अगर आपको कोई जरूरत हो तो आप जरूर हमें बता देना एंड रिक्वेस्ट एवरीवन टू कोऑपरेट इन मेंटेनिंग द टाइम स्केड्यूल एंड मेंटेनिंग द साइलेंस ऑल अराउंड, यहां भी और आपके भवन में। तो फिर से एक बार आपका स्वागत करते हैं एंड रिक्वेस्ट एवरीवन टू रियली एंजॉय दिस वैल्यूएबल डेज ऑफ योर लाइफ। कई लोग यहां आना चाहते थे, टिकट्स बुक थे, कंफर्मेशन था, रजिस्ट्रेशन था, लास्ट मिनट नहीं आ पाए, और कई लोग जिसने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया था लास्ट मिनट के आई एम अवेलेबल कैन आई कम, और वो यहां सभा में बैठेंगे। क्या बताता है आपको, जो आए उसे परमात्मा ने खास आमंत्रण देके यहां बुलाया है, तो आपका एक एक मिनट, एक एक आवर और एक एक दिन बहुत ही अमूल्य है, इन एडिशन टू कि आप अपने व्यापार और उद्योग में आपकी रोज बरोज की कार्य को छोड़ के आए हैं, पर शायद कल सुबह तक आपको पता पड़ेगा ना आपको अखबार की जरूरत है, ना आपको टीवी की जरूरत है, ना आपको आपके मोबाइल की भी जरूरत रहेगी. यू वुड नॉट लाइक इट एंड दैट वुड बी दी फर्स्ट चेंज. सो धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. ओम शांति.
थैंक यू हरीश भाई. इतनी क्लियर गाइडलाइंस हमें प्रोवाइड की. जितना हम इस शेड्यूल को फॉलो करेंगे डेफिनेटली उतना मैक्सिमम बेनिफिट हम लेंगे. तो अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी हमारे मधुरवाणी ग्रुप, जो कि मधुबन का माउंट आबू का मधुरवाणी ग्रुप है, कि वे आकर एक सुंदर गीत द्वारा हम सभी के समक्ष इस स्वागत के भाव को रखें. मधुरवाणी ग्रुप परमात्मा का वो सुंदर ग्रुप है जो हर प्रोग्राम में अपने सुरों द्वारा एक उमंग डाल देता है. सतीश भाई एवं उनकी पूरी टीम ही मधुरता और दिव्यता सरलता से विद्यमान है, और अभी वही गुण वही भाव हम उनके शब्दों में भी अनुभव करेंगे. मधुरवाणी ग्रुप.
ओम शांति. सभी कहें एक साथ स्वर में ओम शांति. ओम शांति. बहुत अच्छी बात हरीश भाई ने कहा. बड़े भाग से कोई ही इस धरती पर आता है, पर जो यहां पर आता है वो सब कुछ पा जाता है. वो सब कुछ पा जाता है. एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कर ले. उद्योग और व्यापार में आध्यात्मिकता आ जाए, सच कहते हैं सारी सृष्टि स्वर्ग शीघ्र ही बन जाए. सबसे बड़े व्यापारी के घर व्यापार बड़ा करने आए, आपका हार्दिक स्वागत है. जो आप महाजन आए. अभिनंदन.
कहते हैं सारी सृष्टि स्वर्ग शीघ्र ही बन जाए. स्वर्ग शीघ्र ही बन जाए. सबसे बड़े व्यापारी से व्यापार बड़ा करने आए, आपका हार्दिक स्वागत है. जो आप महाजन है आए, आप महाजन है आए. मेरे घर सदा मगर मां पगर जखर सारे सवेरे घर सदा मगर मां पगर जखर सा. व्यापार में जब प्यार हो, उद्योग में जब योग हो, राजयोग के योगी बन के योग कनिष्ठ प्रयोग हो. उत्कृष्टता कहते समाज में, उत्कृष्टता कहते समाज में. चार चांद फिर लग जाए, आपका हार्दिक स्वागत है. जो आप महाजन है आए, आप महाजन आध्यात्मिकता आ जाए। सच कहते हैं सारी सृष्टि स्वर्ग शीघ्र ही बन जाए, स्वर्ग शीघ्र ही बन जाए।
आपकी तालियां तस्दीक करनी है, आप यहां पर उपस्थित हैं।
आत्मा का परमात्मा से संबंध जब जुड़ जाता है, सुख शांति सुचि प्रेम शक्ति आनंद से मन भर जाता है। लोभ बदल कर लाभ मिले, लोभ बदल कर लाभ मिले और सबका भला भी हो जाए। आपका हार्दिक स्वागत है जो आप महाजन हैं आए, आप महाजन हैं आए। उद्योग और व्यापार में आध्यात्मिकता आ जाए। सच कहते हैं सारी सृष्टि स्वर्ग शीघ्र ही बन जाए, स्वर्ग शीघ्र ही बन जाए।
ईश्वरीय योजना सफल होनी ही है।
मगर माँ पगर सर सारे सनी रे घर सदा, मगर माँ पगर सर सा बड़ा जौहरी लुटा रहा। सद ज्ञान के हीरे मोती वो बना रहा है विश्व का मालिक, जगा के आत्म ज्योति वो सबसे सस्ता सौदा देख कर, सबसे सस्ता सौदा सीख कर त्रंक राव सा हो जाए। आपका हार्दिक स्वागत है जो आप महाजन है आए, आप महाजन है आए। उद्योग और व्यापार में आध्यात्मिकता आ जाए। सच कहते हैं सारी सृष्टि स्वर्ग शीघ्र ही बन जाए, चार चांद फिर लग जाए, सबका भला भी हो जाए, रंग राव सा हो जाए, आध्यात्मिकता आ जाए, स्वर्ग शीघ्र ही बन जाए, आध्यात्मिकता आ जाए, स्वर्ग शीघ्र ही बन जाए।
बहुत खूब। आध्यात्मिकता जीवन में है, योग के प्रयोग कर इस धरा पर हमको स्वर्ग लाना है। बहुत सुंदर शब्दों में हमारी मधुर वाणी ग्रुप में प्रस्तुत किया। वो जो एक बार जोरदार तालियां कि हम सभी को यही लक्ष्य रखना है कि बहुत ही जल्द हम इस धरा पर स्वर्ग लाएंगे। आज हमारे सामने आज एक ऐसी विभूति है जिनके जीवन ने, जिनकी धारणाओं ने, उनकी प्रेरणाओं ने हम सबका जीवन खूब सवारा है। आपका जीवन एक ऐसी किताब है जिसका हर पन्ना हमें बेहद इंस्पायर करता है। तो हमारी इस रूहानी सेना के कमांडर इन चीफ परमात्मा की बहुत सुंदर रचना, मल्टी टैलेंटेड, डायनामिक, अद्भुत विशेषताओं की धनी आज हमारे सामने परम आदरणीय, परम श्रद्धेय हमारी आदरणीय योगिनी दीदी जी, आपके लिए क्या कहें। आपका मुखमंडल ही एक आभा की तरह है। बाल्यकाल से ही इस संस्था के संपर्क में आए। इन्होंने संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी मम्मा की पालना का आपको परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। 50 वर्षों से समर्पित रूप से सेवाएं अब दे रहे हैं। वर्तमान समय मुंबई विलेपार्ला सबजोन की संचालिका एवं विलेपार्ला के अंतर्गत 25 सब सेंटर है, आप उनका सकुशलता पूर्वक संचालन करती है। आप बिजनेस और इंडस्ट्री विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। आप मुंबई स्थित BSCS MG हॉस्पिटल जो ब्रह्मा कुमारी द्वारा मैनेज किया जाता है उसकी आप ऑनररी डायरेक्टर हैं। जे वॉटुमल ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की आप ट्रस्टी हैं, ऑनररी रोटरियन भी हैं। आपने देश विदेशों में भी सेवाएं प्रदान की हैं। आपके नेतृत्व में आपने भारत भर में पदयात्रा तथा कारयात्रा भी कराए गए हैं और आपकी इन्हीं सेवाओं से आपको बहुत सारे पुरस्कार अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ ह्यूमन राइट्स द्वारा आपको इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स अवार्ड मिले। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने आपको मुंबई के मेयर द्वारा आपको सम्मानित भी किया गया था। कोविड पैंडेमिक में आपने आपके साहस और अथक सेवाओं के लिए आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट दिया गया था जो आपको माननीय अभिनेत्री हेमा मालिनी जी ने प्रदान किया था। उसी के साथ साथ महाराष्ट्र के गवर्नर द्वारा भी आपको कोविड के लिए सम्मानित किया गया था। वुमन एम्पावरमेंट अवार्ड बाय रोटरियन क्लब ऑफ बॉम्बे के थ्रू भी आपको अवार्ड प्रदान किया गया था। तो ऐसी अद्भुत हमारी आदरणीय योगिनी दीदी जिससे हम नम्र निवेदन करते हैं कि आज हमें परमात्मा अनुभूति तथा आपके आशीर्वचन से भरपूर करे। आदरणीय दीदी जी,
ओम शांति। परम आदरणीय हमारे डॉक्टर निर्मला दीदी जी, हमारे स्टेज पर बैठे हुए सारे महानुभाव, और आज हमें बहुत खुशी है हमारे व्यापारी और उद्योगपति पूरे भारतवर्ष से आप सब यहाँ पधारे हो। और मैं तो कहेंगी कि हमारे व्यापारी बिजनेसमैन इस देश की एक निधि ट्रेजरर के समान है। ये तो जरूर है कि आप सब बिजनेस करते हैं तो आपको पहल करनी पड़ती है, दृढ़ताएं बनाई रखनी पड़ती है और हमेशा राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना होता है। और आप सब हमारे देश की समृद्धि बढ़ाने वाले हैं। बहुत खुशी की बात है आप सब यहाँ पधारे हैं। हम साथ साथ ये भी कहना चाहूंगी कि हम देख रहे हैं कि समय कितना तीव्र गति से भाग रहा है और आज विश्व में अनेक समस्याएं हैं। एक हल करो तो दूसरी हल करो तो तीसरी खड़ी हो जाती है। उसमें बिजनेस और इंडस्ट्री भी अपवाद नहीं है और आज बिजनेस लाइफ भी बहुत बिजी हो गई है। आज व्यक्ति को अपने लिए सोचने का टाइम नहीं, परिवार के लिए सोचने का टाइम नहीं होता और सबसे बड़ी बात अपनी हेल्थ के लिए भी नहीं होता। और आध्यात्मिकता जिसकी जीवन में आवश्यकता है उसके लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते। वैसे हमारे बाजू में बैठे हमारे नीरज भाई कोचर एक्सेप्शनल केस है। वो इतने बिजी शेड्यूल में भी सेंटर पर जब मुंबई में होते हैं तो जरूर क्लास करने सेंटर पर आते हैं। ये उनकी विशेषता है। ये तो जरूर है कि जब बिजनेस करते हैं तो प्रॉफिट तो होना ही चाहिए, प्रॉफिट के लिए तो बिजनेस किया जाता है। परंतु मैं कहेगी कि धन और लाभ तीन प्रकार के हैं। पहला जो प्रकार है जिसमें दूसरे को फायदा होता है, खुद को भी लाभ होता है, घाटा नहीं होता है, तो ऐसा धन जो है वो दूध के समान है। परंतु दूसरा बिजनेस की रीति नीति तो ठीक है, परंतु लेन देन में कभी कभी व्यवहार का स्तर जो है उसमें कमी आ जाती है, मूल्यों की कमी हो जाती है। ऐसा जो धन है वो पानी मिश्रित दूध के बराबर है, तो जीवन में सुख और शांति भी उतने ही परसेंटेज में मिलती है। और तीसरा जो प्रकार है जिसमें व्यक्ति को लगता है कि इसने मेरे को धोखा दे दिया है, ये ठीक नहीं हुआ, ऐसा जो धन है जिसको हम सात्विक नहीं कहेंगे। तो आज ये जरूर है कि हमें व्यक्तिगत स्तर पर अपना पुरुषार्थ और आध्यात्मिकता जो है वो जीवन में लाना बहुत जरूरी है। इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस के साथ साथ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का बैलेंस रखना जीवन में बहुत जरूरी है। जब आप अपना बिजनेस करते हो तो तीन पावर की आवश्यकता पड़ती है। पहला इलेक्ट्रिक पावर, मनी पावर और मेन पावर। अभी इलेक्ट्रिक पावर तो इंडस्ट्री की जान है, चाहिए ही। दूसरा मनी पावर, मैनेजर को पे देना, अच्छी मशीनरी लाना, वो भी चाहिए। और साथ साथ में हमें मनी पावर भी चाहिए, तीनों पावर चाहिए। पर इस तीन पावर के अलावा एक चौथा भी पावर है, वो है स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक शक्ति। इस आध्यात्मिक शक्ति से हमारे अंदर आंतरिक शक्तियों की जागृति होती है। जो आज जीवन में कुशलता, आज का विषय ही बहुत अच्छा है, एक्सलेंस इन बिजनेस इंडस्ट्री थ्रू स्पिरिचुअलिटी, व्यापार उद्योग में आध्यात्मिकता द्वारा कुशलता, तो वो हमारे अंदर आध्यात्मिकता से आती है। आंतरिक शक्ति क्या है? बहुत शक्तियां हैं, परंतु परखने की और निर्णय करने की, सक्सेसफुल मैनेजमेंट के लिए ये दो शक्तियों की हमें बहुत आवश्यकता है। सामने वाले को हमें परखना चाहिए कि व्यक्ति धोखा तो नहीं देगा, किस तरह का व्यक्ति है। और कई बार हम कोई बात का निर्णय एक दिन, दो दिन, बहुत दिन लगा देते हैं, कोई कोई तो मास लगा देंगे। तो निर्णय शक्ति भी बहुत जरूरी है सफलता पाने के लिए। तो ये दो शक्ति जो है वो जीवन में होनी चाहिए, साथ साथ पावर टू फेस, सामना करने की शक्ति। जब हम बिजनेस करते हैं तो हर एक को चैलेंजेस जो है वो तो आएगी ही। आप सब यहाँ बैठे हैं, इसमें से कई हमको सुना सकते हैं, बताएंगे अनुभव अपना कि भाई मेरे पास कुछ भी नहीं था, जीवन में मुझे बहुत चैलेंजेस आई, लेकिन आज मैं इस जगह पर पहुंच गया हूं, मैं कुछ भी नहीं था लेकिन आज मेरी इतनी इंडस्ट्री है, ये है। ये कोचर भाई भी अपना अनुभव सुना सकते हैं, बहुत सुना सकते हैं आप में से भी। तो कोई भी बिजनेस तो ऐसा नहीं है या व्यक्ति भी नहीं होगा जिसको चैलेंजेस नहीं आई हो, लेकिन कोई भी चैलेंजेस भी ऐसा नहीं है कि जिसका समाधान जो है वो नहीं हो सका हो। क्योंकि जब मन हमारा कमजोर होता है तो चैलेंजेस समस्या बन जाती है, जब मन हमारा स्थिर होता है तो चैलेंजेस जो है वो एक चैलेंज हो जाती है, और जब मन मजबूत होता है तब हमारी चैलेंजेस जो है वो एक अपॉर्चुनिटी, अवसर बन जाती है। ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय के फाउंडर हमारे गीता बेन ने सुनाया, उन्होंने जब स्थापना किया तो बहुत अपोजिशन हुआ लोगों का, लेकिन उन्होंने कहा कि सत्य की नाव हिलेगी, डोलेगी, पर कभी डूबेगी नहीं। तो वो एक बल, एक भरोसे पे रहे। तो आज कोई भी विश्व का कोना ऐसा नहीं है, कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां सेंटर नहीं हो। पूरे विश्व में कोने कोने में आज सेंटर है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जीवन में ये सब शक्तियां, एकाग्रता की शक्ति आध्यात्मिकता से आती है। आज एकाग्रता से हमारी कार्य करने की जो कार्य क्षमता है वो बढ़ती है, और जब कार्य क्षमता बढ़ती है तो हमारा उत्पादन बढ़ता है, और उत्पादन बढ़ता है तो आपको भी लाभ, देश को भी लाभ होता है। तो मैं कहेंगी हमारे जो लास्ट हमारे केएस राजू हाथ तो उठाइए बैठे हैं ना, उनके फादर केवी के राजू, इन्होंने पहले पहले अपनी इंडस्ट्री में हैदराबाद में काकीनाडा में हमारे बहनों को बुलाया और इन्होंने कहा, बहन आपको मालूम नहीं है, आपको ये मालूम रहे कि मैनेजमेंट में मेडिटेशन की बहुत जरूरत है। मैंने बोला हम तो स्पिरिचुअल है, हम क्या करेंगे। बोला नहीं नहीं बहुत जरूरत है। और उन्होंने हमारी बहनों को बुलाया और प्रोग्राम उन्होंने वहां शुरू किया। उसके बाद सारे इंडिया में ये प्रोग्राम शुरू हुए। वो हमेशा कहते थे कि सर्व सोसाइटी थ्रू इंडस्ट्री और सर्व इंडस्ट्री थ्रू स्पिरिचुअलिटी। तो उद्योग के अंदर योग शब्द जो है वो समाया ही हुआ है। योग बिगर हमारा उद्योग भी अधूरा है। तो अभी हम थोड़े समय के लिए उस योग शक्ति का एक अनुभव करेंगे। थोड़े समय के लिए हम एक अंतर यात्रा की ओर जा रहे हैं। परमपिता परमात्मा जो अनंत शक्तियों के सागर है, दुनिया की हर वस्तु में अपनी अपनी शक्ति होती है। पृथ्वी में सहन करने की शक्ति है, पानी में शीतलता की शक्ति है। उसी तरह से इस जगत के पिता परम आत्मा दिव्य और सूक्ष्म शक्तियों के भंडार है। उनकी दिव्य शक्तियां जब विश्व में फैलती है तो जीवन में परिवर्तन हो जाता है। तो राजयोग चिंतन की एक ऐसी धारा है जो हमें श्रेष्ठ परिवर्तन की ओर ले जाती है। योग मानव को संयम सिखाता है, संतुलन आचरण में ले आता है। जो योगी इस योग को साधे, इसकी जीवन में सदा ही उन्नति होती है। ये क्षण मेरा अपना है, अनमोल है। शांति से परिपूर्ण है, मैं एक अति सूक्ष्म बिंदु स्वरूप आत्मा अपने निजी स्वरूप में, मैं शांत स्वरूप आनंद स्वरूप प्रेम स्वरूप पवित्र स्वरूप शक्ति स्वरूप हूं। संसार के सर्व आकर्षणों से पार, भव बंधनों से आजाद, देहिक संबंधों से उपराम, मैं आत्मा हूं। मैं निश्चिंत हूं, संतुष्ट हूं, तृप्त हूं, निरसंकल्प हूं, दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर प्रकाश, शांति, पवित्रता का संचार करने वाली शुद्ध स्वरूप आत्मा हूं। मैं आत्मा अपने में शांति का स्रोत अनुभव कर रही हूं। शांति का अखंड प्रवाह मेरे चारों ही ओर प्रवाहित हो रहा है। शांति के प्रकंपन फैल रहे हैं। मैं आत्मा अणु से भी सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, एक अत्यंत प्रकाशमान ज्योति का एक कण हूं। ज्योति का एक निर्मल बिंदु होते हुए भी प्रकाश और शक्ति का अपार भंडार हूं। इसी सृष्टि रूपी रंगमंच पर मैंने अनेक नाम रूप धारण कर पात्र निभाए हैं। मुझ आत्मा का असली घर परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम, ब्रह्म लोक है, जहां शांति ही शांति है, जहां प्रकाश ही प्रकाश है। यह आत्मचिंतन मुझे परमात्मा चिंतन की ओर ले जा रहा है। मुझ आत्मा के पिता परम आत्मा शांति के सागर है, प्रेम के सागर है, सुख के सागर है, गति सदगति दाता है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। रूप में ज्योति बिंदु है, शक्ति में सूर्य समान है, सर्व शक्तियों के दाता है। परमात्मा ने मुझे सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता से भरपूर कर दिया है। परमात्मा शक्ति का यह अविरल झरना मुझे प्राप्त हो रहा है। यह सुखद अनुभव मुझे असीम शांति, अपार आनंद, अतींद्रिय सुख का मैं आत्मा अनुभव कर रही हूं।
निश्चित ही हम सभी स्वयं के अंदर शांति और सुख के प्रकंपन अनुभव कर रहे होंगे। तो योगिनी दीदी जी का कितना ना धन्यवाद करें कि इतना सुंदर व्यक्तित्व ओजस्वी तेजस्वी वाणी द्वारा हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया और हमें सुंदर आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव कराया। तो आदरणीय योगिनी दीदी को धन्यवाद। और अब कार्यक्रम के श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही सुंदर विधि, इस शुभ आरंभ की, शुभ दीप प्रज्वलन की विधि की ओर हम बढ़ रहे हैं। कुछ नाम कैंडल लाइटिंग के लिए यहां से अनाउंस होंगे, तो जिन्हों के भी नाम अनाउंस हो रहे हैं उन अतिथिगणों से अनुरोध है कि वे मंच पर आए, साथ साथ हमारे मंचासीन महानुभाव भी मंच पर आएंगे, आगे आकर दीप प्रज्वलन करेंगे। आदरणीय डॉक्टर जमशेद दलाल जी, डॉक्टर रीता दलाल जी कृपया मंच पर आएं। भ्राता शरद गौर जी कृपया मंच पर आएं। भ्राता रवि रेला जी, भ्राता शेषपाल गर्ग जी, भ्राता अनूप ढींगरा भाई जी, सिस्टर पूजा असार जी, भ्राता अनहद भाई मंच पर आएं। आदरणीय भ्राता अजय भाई जैन कृपया मंच पर आए। भ्राता निमिष पटेल जी, आदरणीय अनुश्री बंसल जी, भ्राता नीलेश बंसल जी, आदरणीय भ्राता राजगोपाल भाई जी, भ्राता लालजी भाई जी, आदरणीय सुषमा दीदी, नीतू दीदी जी अगर वे सभा में हैं तो कृपया मंच पर आएं। साथ साथ भ्राता राज सिंह भाई जी, आदरणीय क्रीना दीदी, आदरणीय राधिका बहन जी, आदरणीय दीपा दीदी जी, भ्राता सिंह भाई जी से भी अनुरोध है कृपया मंच पर आएं। और इस शुभ दीप प्रज्वलन में सम्मिलित हों और आप सभी से भी अनुरोध है कृपया अपने स्थानों पर खड़े होकर इस दीप प्रज्वलन की विधि में हम सम्मिलित होंगे। भ्राता मनोज भाई से भी अनुरोध है, हैदराबाद से जो आए हैं कि कृपया मंच पर आए।
अपने अपने मन में जग उजियारा,
हम सभी देखिए कोई कोई जला रहे हैं अपने मोबाइल के टॉर्च ऑन करके इस सुंदर दीप प्रज्वलन की विधि में सम्मिलित होंगे और इसकी शोभा बढ़ाएंगे।
शुभ संकल्पों के दीप जलाए,
बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ से दिखाई दे रहा है।
परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला, राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा प्रेम से, ही सुख कण कण में शुभ संकल्पों के दीप जलाए।
ज्योति विश्व शांति की, ज्योति उम्मीद और अरमानों की, ज्योति अंतर मन के प्रकाश की, और ये ज्योति है एक नए आगाज की, नए आगाज की। आप सभी से अनुरोध है कृपया अपना स्थान ग्रहण करें, और हम अब बहुत ही मुख्य पड़ाव की ओर पहुंच चुके हैं। हम सभी देख रहे हैं इस मंच की शोभा, दिव्य प्रकाश का, दिव्य हस्तों से हुआ पदार्पण, ज्योत से ज्योत जगी और सज गया ये प्रांगण, झिलमिल सितारे सभी करते आपको वंदन, एक उज्जवल भविष्य की ओर हो रहा है आगमन, हो रहा है आगमन। तो सुंदर दीप प्रज्वलन की ये विधि। और अभी हम डॉक्टर निर्मला दीदी जी से उनकी ब्लेसिंग्स सुनेंगे। हम सभी सुन चुके हैं आदरणीय परम श्रद्धे राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर निर्मला दीदी जी। डॉक्टर निर्मला दीदी जी इज अ जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी, डायरेक्टर ऑफ दिस ब्यूटिफुल कॉम्प्लेक्स ऑफ ज्ञान सरोवर एकेडमी फॉर अ बेटर वर्ल्ड माउंट आबू। तो हम जिस प्रांगण में बैठे हैं उसका संचालन दीदी जी बहुत कुशलतापूर्वक कर रहे हैं। अ मेडिकल डॉक्टर एंड अ योगी, दीदी जी कंबाइंस द क्वालिटी ऑफ अ डॉक्टर विद द स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ राजयोगा। दीदी जी केम टू दिस नॉलेज इन 1962 इन मुंबई, where she continued her medical practice for another 10 years. At the same time, she was also running a Brahma Kumari center, imparting spiritual knowledge and teaching meditation. She believes through her experience that it's always the mind over the matter. Meditation helps in maintaining positive outlook, enabling the body to heal faster. So eventually, taking this vision ahead, Didi ji left India for London in 1971 for offering her spiritual services, and thereafter started centers in United Kingdom, East Africa and Mauritius. Didi ji started spiritual services in Australia in 1975 and served 16 countries as the administrative head of Brahma Kumaris in Asia Pacific region. Since 2009, Nirmala Didi ji is serving as the director of the Gyan Sarovar Complex, an academy for a better world, Mount Abu. In 2021, Dr. Nirmala Didi ji was appointed as the joint administrative chief of the Brahma Kumaris. Didi ji has traveled worldwide and received many awards and recognitions for spreading the godly knowledge and divine virtues. Didi ji ke andar anek visheshtaye hain, gambhirta ramnikta ki murat hain aap, gyan aur yog ki saji sajai divya surat hain aap. Didi ji love and law ka sundar balance rakhte hue bahut hi sucharu roop se parmatma ke is behad karya ko sambhal rahe hain aur hamare liye prerna moolt hain. So there's a lot more to her extensive services and rich spiritual journey. Aapki aadhyatmik jeevan yatra ka vyakhyan karna mana sagar ko gagar mein samane jaisa hai. To zyada samay na lete hue main punah anurodh karungi aadarniye rajyogini brahma kumari Dr. Nirmala didi ji se ki ve apne shubh vachan aashirvachan hum sabhi ke samaksh rakhe aur hame labhanvit kare. आदरणीय निर्मला दीदी जी।
ओम शांति। मंच पर उपस्थित इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन महानुभाव तथा सभा में उपस्थित आप सभी बिजनेस और इंडस्ट्री के व्यवसाय में बिजी रहने वाले भाई बहने, आप सभी चार दिन का समय लेकर यहाँ आए हो। बहुत खुशी है और बहुत आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज आप सभी देख रहे हो इकोनॉमी में बहुत ऊपर नीचे सब हो रहा है और कई बिजनेस में बैंकरप्ट हो गई है। कई लोगों का जॉब छूट गया है और सभी टेंशन में है। जिनको जॉब है वो भी टेंशन में है, नहीं है वो भी टेंशन में है। तो जितना ये आध्यात्मिक ईश्वरीय ज्ञान का आप लोग अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि आप रिलैक्स रहेंगे। और जैसे बताया गया, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सुख शांति, और मैं तो इतने तक कहूंगी कि योग द्वारा आप मास्टर सर्वशक्तिमान भी बन सकते हो। जीवन में चैलेंजेस आएंगे, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, परंतु आध्यात्मिक शक्ति द्वारा उसका आप सामना कर सकेंगे। तो अपना संसार चलाने के लिए जरूर आपको अपने काम धंधे में दिल लगाना है, पर साथ साथ यदि बैलेंस रखेंगे कि आप आध्यात्मिक ज्ञान योग भी करते रहें और साथ साथ बिजनेस भी करते रहें, तो जितना बैलेंस रखेंगे आप ब्लिसफुल रहेंगे और आपको सबकी ब्लेसिंग्स मिलेंगे, चाहे परिवार है, चाहे कंपेनियंस है, चाहे स्टाफ है, क्योंकि स्टाफ के साथ भी जितना आप पारिवारिक स्नेह रखेंगे, आध्यात्मिक स्नेह रखेंगे, आप देखेंगे वो भी कारोबार दिल से करेंगे। तो ईश्वरीय विद्या और योग से आप में संतुष्टता आएंगी और लोभ, झूठ, ठगी नहीं करेंगे, क्योंकि कई बार कई लोग कहते हैं भाई लोभ नहीं रखे तो कमाई कैसे होंगे, मोह नहीं होगा तो परिवार कैसे चलेगा। तो क्या है कि ये सब विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, वैर, ईर्ष्या, देहाभिमान, ईगो, ये दुख और अशांति के कारण है और उनको जीतने की शक्ति योग द्वारा आपको मिलेंगे। तो जितना निरंतर सदा रेगुलरली आप योग करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत ही परिवर्तन आएगा। और उम्मीद है यहाँ से आप प्रेरणा लेकर जाएंगे। और यदि आपने 7 दिन का कोर्स नहीं किया है तो आप अपने शहर में जाकर जरूर करना और आप देखेंगे आपके जीवन में कितना परिवर्तन आया है। मैं उम्मीद रखती हूँ कि यहाँ से आप बहुत शक्ति भर के जाएंगे। ओम शांति।
थैंक यू दीदी जी, आप स्वयं ही बैलेंस का एक सजीव एग्जाम्पल हैं। और बैलेंस द्वारा कैसे ब्लेसिंग मिलती है उस पर आपने बहुत सुंदर प्रकाश डाला। तो पुनः पुनः दिल की गहराइयों से आपके वचनों के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही कुछ बैलेंस रखने वाले लीडिंग एग्जाम्पल्स हमारे सम्मुख मंच पर उपस्थित हैं, जिनमें से कुछ हमें अपनी ग्रीटिंग्स द्वारा, अपने अनुभव द्वारा लाभान्वित भी करेंगे और थोड़ा थोड़े समय अपने ग्रीटिंग्स के द्वारा हमें अपने बल को भी हमें प्रदान करेंगे, अपने अनुभव का बल प्रदान करेंगे। तो ऐसे ही एक महानुभाव जो मंच पर उपस्थित हैं, आदरणीय भ्राता मिस्टर रमेश पोदार जी, हम उनसे ग्रीटिंग्स सुनेंगे। इसके पहले इनका चंद शब्दों में परिचय। आदरणीय भ्राता रमेश पोदार जी, ही इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सियाराम सिल्क मिल्स लिमिटेड, अ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर एंड रिटेल कंपनी बेस्ड इन मुंबई। रमेश पोदार जी एक्सपैंडेड द कंपनीज बिजनेस ग्लोबली एंड एस्टैब्लिश्ड सियाराम एज अ लीडिंग ब्रांड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। विथ हिज शेयर डेडिकेशन एंड करेज, he has also been actively involved in various philanthropic activities through the Poddar Foundation, which works towards improving health and livelihood. He is a divine personality and he has been connected with the Brahma Kumaris for many years now. So it's an honor now to invite him and request him to share his greetings in few words. Mr. Ramesh Poddar.
ओम शांति। आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी, योगिनी बहन दीदी जी, मंच पर विराजमान अन्य सभी भ्राता भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं ब्रह्म कुमारीज के सभी जो आयोजक हैं उनका बहुत दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि 3-4 साल से जो हम सपना देख रहे थे कि एक बार हमको जरूर माउंट आबू में यहां पर आना है, और आज वो सपना हमारा पूरा हुआ। जैसे ही इस प्रांगण में हम लोगों ने प्रवेश किया तो यहां की जो पॉजिटिविटी थी वो मन को लुभाने वाली थी। तो हमारा जो सपना पूरा हुआ वो मुझे ऐसे पूरी उम्मीद है कि हमारी पूरी जिंदगी भर हमें याद रहेगा दीदी। और यहाँ पर जो 2-3 दिन का हमें अनुभव होगा वो भी हमें बहुत ही लाभ प्रदान करेगा। ब्रह्म कुमारी इसका पर्सनली हमारे जीवन पर, पर्सनली मेरे जीवन पर बहुत असर पड़ा है। खास करके योगिनी दीदी जी, शिवानी बहन, दीपा दीदी जी, इन्होंने पर्सनली मेरे सोचने के तरीके में बहुत ही चेंजेस लाए हैं। शिवानी दीदी के प्रवचनों को सुनकर मुख्य पांच बातें मैंने जो ब्रह्म कुमारी से और शिवानी दीदी से सीखी हैं वो सिर्फ दो मिनट में मैं आप लोगों के सामने व्यक्त करना चाहता हूं, जिससे जो भी बातें हमने सीखी है उसको अमल करने में पर्सनली मेरा कमिटमेंट लेवल और ज्यादा बढ़े। तो सबसे पहली मुख्य बात जो हमने ब्रह्म कुमारी और सिस्टर शिवानी जी से सीखी है वो ये है कि जो भी बाहरी परिस्थिति है वो भले मन को लुभाने वाली हो या मन को तकलीफ देने वाली हो, उसको अपने मन पर कभी भी हावी नहीं होने देना चाहिए। और अगर बाहरी परिस्थिति को हमारी मनस्थिति में हमने हावी नहीं होने दिया तो हमारे जीवन में बहुत खुशियां आ जाती है। एक ये मुख्य बात हमने ब्रह्म कुमारी जो शिवानिधि जी से सीखी है। दूसरी जो मुख्य बात हमने पर्सनली मैंने शिवानी जी से और ब्रह्म कुमारी से सीखी है कि जो हमको खुद को चाहिए वो सबसे पहले हमें दूसरों को बांटना होगा, क्योंकि जितना हम दूसरों को बांटेंगे वो भले समाज को हो, संस्थान को हो, हमारे मित्रों को हो या हमारे देश को हो, उतना ही ज्यादा वो घूम करके हमारे पास ज्यादा से ज्यादा आएगा। तो जितना बांटेंगे उतना हमको मिलेगा, भले वो प्यार हो, हैप्पीनेस हो, एम्पथी हो, हर चीज बांटने से हमको दुगनी तिगनी वापस घूमकर हमारे पास में आएगी। तीसरी मुख्य बात दीदी से हमने जो सीखी वो ये कि हमें हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि हमेशा मुस्कुराते रहने का एक बहुत जबरदस्त पावर है। और उस शक्ति को हर मुस्कुराने वाले व्यक्ति को अगर आप पूछेंगे या देखेंगे तो एक बहुत अपार खुशी होती है। जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं जिनके चेहरे पर इतना ऑरा होता है कि वो जब किसी भी सभा में प्रवेश करते हैं तो पूरी सभा में एक खुशबू फैल जाती है। और यहां पर तो मैं देख रहा हूं कि इतने सारे प्रतिभाएं हैं जिनके सभी के चेहरे पर एक ऑरा फैला हुआ है, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं जिनके चेहरे पर ऑरा फैला हुआ है, तो ये पूरा हॉल खुशबू से भरा हुआ है। और हम लोग जब यहां से जाएंगे तो इतनी खुशबू लेके जाएंगे जो कई सालों सालों तक हमारी जिंदगी में वो खुशबू बनी रहेगी। चौथी जो हमने बात सीखी कि हमें अपनी जिंदगी में अपने जीवन को अगर सुखी करना है, औरों को सुख देना है, तो एक बहुत एम्पैथिक लिसनिंग से हमको लोगों को सुनना चाहिए। अगर हम किसी और को बहुत दिल से और मन से उनकी बातों को सुन लेते हैं तो सामने वाले को तो आराम और उनको अच्छा लगता ही है, लेकिन हमको खुद को भी बहुत अच्छा लगता है। ये भी एक बात हमने शिवानी दीदी और ब्रह्म कुमारी से सीखी है। पांचवी मुख्य बात, ऐसे तो हमने बहुत सारी बातें सीखी है, टीवी में, वीडियो में, प्रवचन सुन करके बहुत सारी बातें सीखी है और अपने जीवन में उसको अमल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन समय की सीमा है। इसलिए जो पांचवी मुख्य बात हमने सीखी कि हम सबके जीवन में दो तीन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने जेन्युइनली बहुत हमारे जीवन में कोई ना कोई तकलीफें दी है, हमको एक मुश्किल में डाला है या हमारे साथ अच्छा नहीं किया है। तो एक बहुत अच्छा मंत्र शिवानी जी ने और ब्रह्म कुमारी से हमने सीखा है कि ऐसे लोग जो हमारे मनस्थिति में, हमारे मन में जो जिन्होंने पूरा स्थान बना रखा है, हमको उनसे छुटकारा ही नहीं मिलता, उनसे छुटकारा पाने का एक बहुत अच्छा मंत्र दिया है कि आप अपनी आंख बंद करें और ऐसे तीनों चारों व्यक्ति को जो आपके जीवन में एक तकलीफ दे रहे हैं उनके अपने आंखों के सामने लाएं और दिल से उनको आप एक भावनाएं भेजें कि आपने हमको जो कुछ भी तकलीफ दी थी या कोई बात हुई थी वो जरूर ही आपके तरीके से बहुत सही रही होगी, तो भगवान आपका भला करे, भगवान आपको बहुत उन्नति प्रदान करे। और अगर दिल से आप ये काम करते हैं तो डेफिनेटली वो व्यक्ति आपके जो मन को परेशान करने वाला होता है वो हमारे मन से निकल जाएगा और उसके भी जिंदगी में, उसके भी जीवन में खुशियां आएगी और हमारे भी जीवन में खुशियां आएगी। तो ये मुख्य पांच बातें हमने सीखी है जिनसे पर्सनली मेरी जिंदगी में बहुत परिवर्तन आया है और मैं यही बातें आपको शेयर करना चाहता था। और यहां पर जो दो तीन दिन हम रहेंगे उसका भी एक बहुत बड़ा लाभ हमको मिलेगा और मैं महसूस कर सकता हूं कि ये चीजें हम अपने लाइफ में कभी भी नहीं भूलेंगे और प्रभु ने चाहा तो फिर से यहां पर हम बार बार आते रहेंगे। तो एक बार बहुत फिर से दिल की गहराइयों से आप सभी लोगों का बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं और यहां पर हमको आमंत्रित करने के लिए भी अपने मन से बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और ये जो दो तीन दिन का प्रोग्राम है इंडस्ट्रीज के लिए और बिजनेस के लिए स्पिरिचुअल के थ्रू आप करना चाह रहे हैं वो डेफिनेटली प्रभु से परमात्मा से यही प्रार्थना है कि बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भाई जी। सिर्फ आपको आज नहीं लेकिन यहाँ बार बार आना है क्योंकि आप आज इस ईश्वरीय परिवार के हो ही गए थे लेकिन आज ये पक्का हो गया है। हम आगे बढ़ते हैं। डिवाइन इंट्यूशन और अथक पुरुषार्थ से जिन्होंने सफलता के कई आयाम हासिल किए, जिनकी हिम्मत, साहस और उमंग उत्साह आज भी सभी के लिए एक मिसाल है, ऐसी महान विभूति आदरणीय भ्राता किशोर बियानी जी आज हम सभी के साथ हैं। आप एक ट्रू लीडर और कॉरपोरेट जगत के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। आपको भारत की रिटेल इंडस्ट्री को बदलने में आपकी मुख्य भूमिका और आपके असाधारण कौशल व्यापार कौशल्य के लिए जाना जाता है। बिना किसी बाह्य सपोर्ट के व्यवसाय शुरू करना कभी आसान नहीं होता है और आपने ये सब अपने अथक पुरुषार्थ पर किया। फ्यूचर ग्रुप के संस्थापक और सीईओ के रूप में आपने आधुनिक रिटेल कॉन्सेप्ट और नए व्यापार मॉडल को पेश करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपके नेतृत्व में 400 से अधिक शहरों और टाउन में 2000 से अधिक रिटेल स्टोर स्थापित किए। दुनिया भर में लाखों ग्राहकों की सेवा करते हुए आपने सीईओ ऑफ द ईयर, दूसरा मोस्ट एडमायर रिटेलर ऑफ द ईयर ऐसे कई अवार्ड आपने हासिल किए। हम आपसे निवेदन करते हैं कि अपनी शुभ भावना हम सबके सामने रखें। आदरणीय भ्राता किशोर बियानी जी,
ओम शांति। आदरणीय निर्मला दीदी जी, गीता बहन जी, योगिनी बहन जी, मेरे लिए आज काफी कुछ फर्स्ट है। फर्स्ट टाइम माउंट आबू में आए, फर्स्ट टाइम ये कॉम्प्लेक्स में आए, फर्स्ट टाइम एक वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन में हिस्सा ले रहे हैं और फर्स्ट टाइम एक ऐसे प्रोग्राम में आए हैं जो कि मैं समझता हूँ कि इंडिया में इसकी बहुत जरूरत है, स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन इन बिजनेस। तो बिजनेस में मैं समझता हूँ कि बिजनेस हैज इट्स ओन चैलेंजेस, इट गोज थ्रू इज हाईज, इट गोज थ्रू इज लोज। बिजनेस में हम लोगों को मार्केट में जीतना है, बिजनेस में हम लोगों को कस्टमर्स को के साथ जीतना है, बिजनेस में सक्सेस पाना है, बिजनेस में रेगुलेशन से डील करना है, बिजनेस में बहुत कुछ चीजें करनी पड़ती है एंड आवर डिसीशन मेकिंग हैज टू बी क्वाइट गुड, आवर कॉन्सेंट्रेशन हैज टू बी गुड, आवर फोकस हैज टू बी देयर। एंड इस चीज के लिए मैं समझता हूँ जो ये प्रोग्राम है मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी अंडरस्टैंडिंग द होल अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स ये बहुत फायदे रहेगा। एंड आई थिंक जब ये आप लोगों ने इन्वाइट दिया तो रमेश जी के थ्रू हमने मतलब एक सेकेंड लगा कि हमारे को यहाँ आना ही है। तो आई थिंक इट वॉज अ कॉलिंग टू कम टू दिस प्रोग्राम एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्निंग समथिंग हियर इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। Wishing you all the best and I wish this program is taken to all over the country and many many people participate in this. Thank you.
थैंक यू आदरणीय भ्राता किशोर बयानी जी कि वे आमंत्रण स्वीकार करके यहाँ आए और चंद शब्दों में बहुत बहुत प्रैक्टिकल बातें हमारे समक्ष रखी। तो पुनः पुनः उनकी ग्रीटिंग्स के लिए उन्हें धन्यवाद है। ऐसे ही एक व्यक्तित्व जो कि आध्यात्मिकता को बिजनेस में समावेश कर रहे हैं हमारे समक्ष मौजूद हैं आदरणीय भ्राता के एस राजू भाई जी, जो कि हैदराबाद से आए हैं। रिस्पेक्टेड ब्रदर के एस राजू भाई इज द फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ नागार्जुना फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। ब्रदर के एस राजू भाई हैज ओवर मोर देन 40 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एंड इज नोन फॉर हिज इनोवेटिव आइडियाज एंड स्ट्रैटेजिक विजन। He has received several awards and recognitions for his contribution to the Indian fertilizer industry, including the Outstanding Entrepreneurship Award from the PHC Chamber of Commerce and Industry, New Delhi, and Lifetime Achievement Award from the Fertilizer Association of India, which is a very renowned recognition. He is instrumental in supporting the spiritual services of Brahma Kumari's Nagarjuna Management Center in Hyderabad. तो अभी थोड़े समय पहले ही जो योगिनी दीदी जी मेंशन कर रहे थे कि कैसे आपके फादर ने, जो कि आदरणीय के राजू जी ने, उनके विजन और उनके इंस्पिरेशन के द्वारा ये सुंदर सेवा शुरू हुई कि बिजनेस में, मैनेजमेंट में कैसे स्पिरिचुअलिटी को इम्बाइब किया, तो उसी सेवा को आप भी बहुत सुचारू रूप से सस्टेन कर रहे हैं और महत्वपूर्ण अपना योगदान दे रहे हैं। तो ऐसे केस भाई तो अभी इस ईश्वरीय परिवार के बहुत ही मुख्य सदस्य हैं। तो ऐसे हमारे आदरणीय और अनुभवयुक्त और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के धनी भ्राता केस भाई से हम अनुरोध करेंगे कि वे कृपया सामने आए और अपनी ग्रीटिंग्स द्वारा हमें लाभान्वित करें। आदरणीय केस भाई।
Om Shanti. Do we mean it? Om Shanti, once again. The universal spirit who is ever present all around us and within us, to all the beautiful souls assembled today in this beautiful auditorium, to Nirmala Didiji, Yogini Ben, my beautiful sister, Geeta Ben, Harish Ji, and all the wonderful brothers, accomplished illuminaries from the Indian industry and business, all the participants who have come from all over the country to participate, teach and learn from each other through the medium of spirituality in the next few days. You're all lucky to be here actually. And all the brothers and sisters of the Brahma Kumaris organization. It's lovely to be here. I'm so happy to be here. I was told that I should limit my talk to only 2 minutes. Can I make it 3 minutes? I was introduced as the founder chairman of Nagarjuna Fertilizers. There's a mistaken identity. My father was the founder chairman. I was of course always with him, tagging along with him everywhere, and I've now taken his place after he decided to move on to the next dimension in his evolution. You know, this concept of mistaken identity is what my father, Mr. K.V.K. Raju, and as you call him, K.V.K. Raju Bhai, in this organization here, this idea of mistaken identity is what he was obsessed with. You know, if I look at myself and say, I am K.S. Raju, I am 5 feet 8 inches tall, and the son of Mr. K.V.K. Raju, and the chairman of this company, this is what I identify myself to be, then I would call that to be a mistaken identity. What I am truly is something beyond what you can see, what I can see in the mirror. I am that energy in this beautiful body, of course, but I'm still the energy which is thriving inside here. I'm the intelligence inside here. And I am speaking to you through this beautiful body as my instrument. Unless I recognize myself as to who I truly am, if I do not know myself and I go out to conduct business, which is a much larger dimension involving so many stakeholders, multidimensional, you know, environment, if I don't know myself, if I'm mistaken in my own identity, how will I go about conducting my affairs in business and make meaning out of it, make sense out of it, make it sustainable, make it enjoyable to all the stakeholders? There's no way. If I do not know myself, I will not know everything else, anything else. So in this search which my father had, and I happened to be sharing that, he came across the Brahma Kumaris in 1990 in Hyderabad. You know, some of the sisters came to our office, invited him to come and join as a guest in a beautiful auditorium in Hyderabad. And he went there, not knowing what he was going to see. And he saw in 1990, this is almost 33 years ago, that everything went on so smoothly. There were hundreds of people in the auditorium. Every event, every single thing to the last detail went immaculately, perfectly. And he realized that however big a business organization can be, whatever resources they may have, they can never manage it that perfectly. And who was managing that event? All women, ladies, not many of them well educated or professionals, had no training, but they managed that so well. So he said there must be some secret, some magic that these people have, and I must get that magic. I must learn that magic. That's when he got involved with the Brahma Kumari institution. And he was around only for next 2.5 to 3 years only, before in June the 16th, 1993, he went on to his other dimension. And he felt that a business or industry is an organized institution which has a huge impact on society. Huge impact. And therefore, the leaders of the business and industry should transform from inside out, should bring out the divinity, the strength, the power to know who you are truly. And from that space, wholesome space, the divine space, then we look at, you know, your stakeholders, look at your purpose in your business. There's more meaning to it. There's so much that you want, should be doing, can do, and being in a situation where you have an opportunity to do good to many people. You are one of the chosen few. One of the chosen few who, let's say, nature or universe has given that opportunity into your hands. It's a tremendous opportunity. And what you should do is obviously to give your best. And if you are in that space in yourself, the divine space of yourself, and look at all the stakeholders, there's nothing but the best will come. There will be nothing but the best. And if you mean well, you think well, you speak well, and you act well in a truly wholesome manner, good for everybody, then the result shall be the best result. It will result in the growth of the business. It will result in satisfaction of all the stakeholders. It will result in a huge bottom line, profits, and growth. Business is not, it's just a part of society, an arm of the society. It doesn't exist by itself. It is an integral part of society, but it is a distinct arm. And our role is to give our stakeholders what they need. Do it in a manner that is sustainable, in a manner it has value to everybody. And obviously, without profits, you can't sustain the business. So there shall be profits, and all of them, all those who take the risks of conducting the business, shall share in that prosperity as well. But unless there is a prosperity for everybody, good for everybody, this business will not sustain. It's obvious. Now, having said all that, I came with my father here in 1992. And when we came here to Gansarovar, this was being built at that time. It was under construction. And all the Brahmakumaris, all the brothers and sisters were wondering, how can we find the funds to complete this complex? Now, it has been 22 years since then, 21 years since then. Not only has this been, Gansarovar has been completed in the most beautiful manner. Today when I came and saw it, has really grown even much more than ever before. But then, you know, downhill, Talati, the 80-acre property which was empty when we first came, is now bustling with activity and having a huge complex with an auditorium which houses 35,000 people at one time. Okay? And not only the huge complex there, but in Hyderabad, in UK, across the world, there's been such a growth. And most importantly, this growth happens in such a subtle manner. You know, we don't have to do marketing, advertisement, campaigning, you know, bring customer loyalties, all that blah blah we do in business. But in a subtle manner, very quiet manner, it has exploded, I would say, into 12,000 centers across the world in 120 countries. This is a business which has shown that this can be done and done perfectly. But the driving force is the spirit, and only the spirit. The spirituality, the understanding of who I am, and the connectivity to who we are, and the role that we shall play. My kaun hu? My kiska hu? I belong to the universe, the universal spirit, and the child of the universe, and the child of the universal spirit. And what do I have to do? Mujhe kya karna hai? These are the beautiful words of the Dadiji's, Prakashmani Dadiji, Janki Dadiji, Gulzar Dadiji, and of course Ratan Mohan Dadiji, and all of you here, of course. This is our role. And all the fantastic examples that you have here, and many out there in the world, all those who knew who they were, and who gave up themselves fully in giving, thou shalt receive. Thou shalt receive, we just mentioned. Only when you give, you get back. And God says, to those who give, he gives more so he can continue to give. Those who take, it will dry up very quickly. So in giving, it's profitable to give, to share your love, your resources, your capabilities, share and share as much as you can. And the more you give, the more you get. And the fulfillment that as entrepreneurs, as business people, that we will get to take away with us when we leave this so-called mistaken identity to another one. The fulfillment is only that person can understand. My father has been spoken about 1993, almost 30 years since he left this body. He's still spoken about as if he were here today, right now. And that's the value that is brought to the table, not only to our business, but also to all business people of this country. He has been a great example. The Brahma Bamba of the Brahma Kumari, the founder, you know, is in such a humble, he gave up all his riches, came to this place and set up this institute, and it has grown. And he's not a band, this is not a business. The Brahma Kumari institution is not something where they for profit, you know, and growth is not from that perspective at all. There's no incentive. We believe in incentivizing, where to promote people, where to incentivize. No, it doesn't happen that way. You'll get inspired. And who can be more inspired than people who speak from the heart, you know, who are spiritually oriented? There can be no inspiration greater than that. This is a classic example of how a business can grow in unlimited manner, respected by all, loved by all. And the kind of resources that the Brahma Kumari organization has today in terms of people, the commitment, lifelong commitment, and the networks that we have is one of the most extraordinary things that I have seen and observed. And therefore, all my, you know, appreciation, I would say I don't have the words to say it, adoration for all the extraordinary work being done by all the beautiful spirits of this organization, and all of us who happen to be associated with or coming to join with and benefit from, we're all fortunate to be here in this moment. Let us take the best of it and go back, and we shall perform our roles in the best possible manner, and we will reap immeasurable benefits down to earth. So coming back to mistaken identity, that I'm so happy to be here with all of you. As some people have known, many people have not known, but are getting acquainted today. And I wish all of you a wonderful time in the next few days. Lots of love, lots of learnings. Let's go back and make this world a much better world. Thank you.
Thank you so much, respected K.S. Rajubhaiji, for that profound emphasis on who we are, what is our real identity, and bringing us back to that sacred space, our true identity. Thank you once again. We do remember K.V.K. Rajubhai and can never forget the value he has added throughout. Another such eminent personality is here with us. And more than that, again, I would call a member of this spiritual organization, respected brother Mr. Neeraj Kocharji. Mr. Neeraj Kocharji is the chairman and managing director of Viraj Profile Limited, a brand name in the world of stainless steel. Brother Neeraj Kocharbhai started with a small group and with his sheer dedication and courage transformed the steel production worldwide, acclaiming as one of the best leading private companies of India. He is connected with Brahma Kumaris for more than 3 years now and practices regular meditation, and with his vision to benefit all the people of the industry and the family of Viraj Profiles Limited, he collaborated with Brahma Kumaris, Vile Parle, Mumbai, and became instrument in opening a beautiful management center named as Brahma Kumari's Viraj Profile Management Center in July 2021, which is located in the industrial area of Boisar. And the retreat center is imparting regular spiritual training and transforming lives. So such a beautiful credit goes to him in initiating this service with the Brahma Kumaris. So I now please invite respected brother Mr. Neeraj Kocharji to address us and share his greetings with us.
Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Respected Dadiji, Yogini Man, Himla Didi, Deepa Bhen, or Meri Choti Bhenne, Piche Baithi Hui Hai, Pratima Bhen or Amrita Bhen. Main sabse pehle in sabka guzar, shukar guzar hun. Meri journey bahut choti hai. Sirf मैं 2020 7 अप्रैल से मैंने फैमिली को ज्वाइन किया है. जब मैंने फैमिली को ज्वाइन किया था तो मैं स्वार्थी था. स्वार्थ हर आदमी कोई काम करता है तो स्वार्थ के लिए करता है. तो मैंने भी उस दिन स्वार्थ के लिए किया था क्योंकि उस टाइम कोविड था. कोविड में आपको याद होगा कि हर चीज बंद थी. कोई चीज अलाउड ही नहीं थी गवर्नमेंट की तरह से चलाने के लिए. कुछ बंद थी, कुछ हमारे भाई बंद डर के मारे आते नहीं थे. तो मैंने जब ये चालू किया तो इस तरह से मेरी जर्नी है. बड़ी छोटी सी जर्नी है कि मेरे को ब्रह्मा कुमारी के बारे में कुछ मालूम नहीं था. तो रोज सुबह मैं जिम करता हूं तो मेरी ट्रेनर बाहर से है. So I feel very stressed when my manufacturing plant is closed. जब मेरी factory बंद होती है, तो it is like your heart is sinking. तो उस जमाने में factory बंद होने चालू हो गई. पहले कम हुआ, फिर plant बंद होने चालू हो गए. तो I was very much stressed. तो मैं gym करता था रोज सुबह. तो मेरी trainer कहती है कि आप थोड़ी देर meditation कर लो 5 minutes. But she said, after gym, you do 5 minutes meditation. मैंने कहा चलो अभी कुछ करने को तो है नहीं, तो meditation करते हैं कोई उसमें. तो she is English, she is from Manchester. तो उन्होंने मेरे को लिटाया और they started English TV जिसके अंदर बोला गया, जो English में बोल रहे थे कि you are going in jungle, when you go in the jungles, what? Meditation language, they want to speak, close the eyes and... But second day, again she said, so I am not educated, I don't have any things to write, I am explaining you my experience, how I joined the family. So, dusre din, phir usne gym khatam kiya, to mere ko lita diya, meditation ke liye. To humare logon ke dimaag mein yehi aata hai, कि मेडिटेशन मीन ओम शांति, राइट? क्योंकि इतने वी आर नॉट स्पिरिचुअल, वी आर नॉट गॉन टू दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग एजुकेशन एंड आई एम नॉट अ मैन हु हैव अ बैकग्राउंड ऑफ एजुकेशन. माय क्वालिफिकेशन इज ओनली 6th स्टैंडर्ड. देन अगेन सेकेंड डे आई टोल्ड हर प्लीज पुट समथिंग इन हिंदी ओम शांति. नेक्स्ट डे उसने ओम शांति लगा दिया. तो एवरी हाफ अ सेकेंड ओम शांति ओम शांति. इट मीन्स वी आर डूइंग मेडिटेशन. थर्ड डे फिर उसने लिटाया तो उसने यूट्यूब लगाई तो गलती से शिवानी बहन का उसके अंदर स्पिरिचुअल आ गया. और आई एम वेरी I told you, पहले ही बताया कि मेरी खासियत क्या है. तो मतलब प्रस्था. तो I was looking anything where I can convince my family members who are working with me to come out and work in the manufacturing production करें. तो एक एपिसोड सुना नॉर्मली वो मेरे को 5 मिनट कराती थी, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, तो मैंने उस मेडिटेशन के दौरान ही 2 एपिसोड सुन लिए। तो फ्राइडे का दिन था, तो फिर मेरे को एक चीज मिली, आई डोंट नो ब्रह्मा कुमारी क्या है, आई डोंट नो शिवानी दीदी क्या है, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस, ये हकीकत है। तो ऊपर आया, 2-3 एपिसोड सुने, दूसरे दिन फिर सुने, तीसरे दिन मेरे को लगा कि आई शुड टेक हर टू बॉयसर, बॉयसर में ले जाऊं तो टीवी के थ्रू इनके मीडिया में इनसे रिले करूं। आई डोंट नो बिफोर दैट कि व्हाट इज शिवानी दीदी, व्हाट इज ब्रह्म कुमारी, व्हाट इज संस्था। मेरे बॉम्बे लंदन में मेरा घर है, तो मेरी जो मैनेजर है, हाउस की मैनेजर, शी वॉज वेयरिंग व्हाइट ड्रेस, और हमेशा संडे को बोलती थी, लेट आती थी, तो कहती थी मैं लेट आती हूं। मैंने क्या बात है, कहती मैं सेंटर जाती हूं। तो थोड़ा सा मेरे दिमाग में याद थी, तो मैंने फोन किया लंदन संडे को कि टीना मैन, आप टीना, उसको हम टीना बुलाते हैं, एक्चुअली उसका नाम भी योगिनी मैन है, योगिना। तो उनको फोन किया, मैं कह डू यू नो शिवानी, बीके शिवानी, कह दी यस। मैं क्या, मेरे को कहते क्या काम है, मैंने कहा ऐसे ऐसे, आई एक्सप्लेन हर, उनकी एक बहन भी रहती है मीना बहन, तो वो भी, उनको पूछा तो उन्होंने बोला टीना ही है तो आपको बात करेगी। तो उन्होंने, मैंने बोला मेरे को हाउ आई शुड ब्रिंग हर इन बोईसर और टू इंटरेक्ट विद माई टीम, जो मेरे ऑपरेटर्स, फिटर्स, जो भी टीम है प्रोडक्शन की, उनको कैसे कन्विंस करें कि दिस इज नथिंग, कि यू हैव टू कम आउट एंड फेस दिस पोजीशन। तो उन्होंने बोला अच्छा मैं कोशिश करती हूं। उसका 15 मिनट बाद फोन आ गया, क्या वो कल सुबह आपको 11 बजे फोन करेगी। तो दूसरे दिन मैं ऑफिस में बैठा था, सब कोविड बंद था, मेरे ड्राइवर भी आते नहीं थे, मैं खुद ही गाड़ी चला के फैक्ट्री जाता, ऑफिस जाता था। तो शिवानी बहन का फोन आया, तो ऐसे ऐसे मैंने अपनी पूरी स्टोरी बताई। स्टोरी बताने के बाद उन्होंने बोला एक काम करो, शाम को 5 बजे आप सेंटर चले जाओ। कहां पे? थर्ड रोड पे, जू में। कहां रहते हो? मैंने जू में रहता हूं, तो जू में सेंटर चले जाओ। तो 5 बजे मैं चला गया, दीपा बहन थे, योगिनी बहन थे, तो सारी बहनें थी, और मैं और मेरी डॉटर इन लॉ, मेरी बहू, हम दोनों गए। तो दैट वॉज द 7th of April इवनिंग 5 o'clock 2020, इज वेरी रिसेंट एपिसोड। उस दिन दीपा बहन से परिचय हुआ, सब बहनों से परिचय हुआ। तो एवरी मॉर्निंग 7:30 आई स्टार्ट, 7 to 7:30 दे कॉल्ड मी फॉर राज योगा, आई एंड माई डॉटर इन लॉ स्टार्ट गोइंग। वो दिन से लेके आज का दिन है, मेरा ख्याल शायद ही मैंने किसी दिन मुरली नहीं सुनी हो। दैट वॉज द टाइम वेन आई स्टार्टेड। देन आफ्टर दैट कोविड के टाइम में टू मच सपोर्ट टू विराज फ्रॉम ब्रह्मा कुमारी सेंटर, एवरीबडी, एवरी सिस्टर हैज सपोर्टेड अस टू मेक एवरीबडी पॉजिटिव, नॉट ओनली मी, 12,000 मेरे जो फैमिली के मेंबर हैं सबको पॉजिटिव किया। ये तो जब मैं गया था स्वार्थ से गया था, अपने आदमियों के मेरे स्टाफ आ जाए और मेरे प्रोडक्शन मैनेजर आ जाए, सब आ जाए, बट उसके साथ साथ जो एक्सपीरियंस हुआ, जो मेरे को मिला, ज्ञान तो सब जगह मिलता है, सारे रेडियो पे मिलता है, सारे टीवी पे मिलता है, सारे न्यूज़पेपर में मिलता है, जिस तरह से ज्ञान समझो, सुनना चाहो, हर तरह का ज्ञान मिलता है। मगर जो मैंने इधर से सीखा, ज्ञान के साथ जब तक आपको योग नहीं होगा तो ज्ञान पूरा नहीं होगा। तो ये चीज यहां पर मेरे को सुबह 4:45 उठना और 4 बजे योग करना, और चार बजे योग करके फिर उसके बाद जिम करना, फिर योगा करना, फिर मुरली सुनने जाना 7 से 8 बजे तक, ये एक मेरा नियम सुबह 4 बजे से लेके 8 बजे तक बन गया। ये नहीं कि आई एम इन इंडिया, आई एम इन बोईसर, आई एम इन बॉम्बे, वेयर आई एम इन द वर्ल्ड, दिस इज द थिंग आई गॉट फ्रॉम दिस ब्रह्मा कुमारीज एंड नाउ आई एम ट्राइंग एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि आज जो मेरी 12,000 फैमिली मेंबर्स हैं, जो 12,000 मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, वो सारे के सारे दे विल गेट दिस बेनिफिट एंड दे आर गेटिंग दिस बेनिफिट, दे आर गेटिंग दिस बेनिफिट ऑफ पॉजिटिवनेस ऑफ योग। और ये हकीकत है कि इसके अंदर ऐसी ताला की चाबी है कि जिस ताले पे लगती है वो ताला खुलता जाता है। सबसे बड़ा ताला हमारी अपनी बुद्धि का है जो बिना पैसे के खुल जाता है। थोड़ा योग करना पड़ता है जिसके लिए थोड़ा तकलीफ होती है, मगर उस योग से इतना जो ज्ञान है वो अपने आप आपको डायरेक्शन दिखाता जाता है। तो आई एम थैंकफुल विद दिस संस्था, और इधर से मैं जब भी आता हूं कुछ ना कुछ लेके जाता हूं। इसके साथ पिछली बार आया था तो मैं इनकी किचन की पूरी कंटीन की कॉपी करा था, वही आज हमारी फैक्ट्री के अंदर 7,000 आदमी ब्रेकफास्ट लंच डिनर करते हैं, सेम यही बिना लहसुन के बिना प्याज के ऐसे ही सेम जो यहां पे होता है हम यही कोशिश कर रहे हैं। और उसमें हकीकत कोई टेस्ट में फर्क नहीं होता है, सोच का फर्क है कि लहसुन के बिना खाना अच्छा नहीं बनता, प्याज के बिना नहीं बनता, मैं वो बिना उसी के खाता हूं। पंजाबी जो फैमिलीज होती हैं वो तो बचपन से ही पैदा होता है तो नॉनवेज से चालू होता है, आपको तो पता है क्योंकि आप भी कुछ पंजाबी होंगे पढ़ते होंगे, मगर आज 3 साल हो गए हैं हमें ये भी नहीं पता है कि अंडा खाया या नहीं खाया, प्याज खाया कि नहीं खाया, कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। देयर इज नो डिफरेंस, यू कांट फील एनी डिफरेंस विद दिस, ये खाली सोच है। ये प्रोटीन है, ट्रेनर क्या कहते हैं, प्रोटीन है, ऐसी सब प्रोटीन है आपको सब खाने में मिलती है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है, मेरा एक्सपीरियंस यही है, व्हाट आई वांट टू शेयर विद यू इज टोटली के यू शुड डू योग। ज्ञान तो रोज सुनोगे, शिवानी बहन ज्ञान देंगी, रोज सुनोगे, रोज सुनते हैं। मेरे कई दोस्त हैं कहते राजू भाई हम भी बीके शिवानी को सुन के ही सोते हैं, सुबह उठते शिवानी बहन को सुन के ही सरते हैं। दैट इज ऑल ज्ञान व्हाट यू गेटिंग एंड दैट इज गेटिंग फ्री। उसके साथ एक और चीज है राजयोगा, जो आपको अगर चाहे वो भी फ्री मिलता है, मगर उसके साथ अगर योग करोगे सुबह 4 बजे से लेके 4:45 बजे तक आपका कनेक्शन डायरेक्ट गॉड से मिल जाता है। क्यों, उस टाइम तक जो पंडित होते हैं प्रीस्ट होते हैं वो भी नहीं आते हैं, वो भी 4:45 बजे के बाद आते हैं। ठीक कह रहा हूं, थैंक यू, ओम शांति।
ओम शांति। मैं विशेषता बताती हूं कि हम एक BSCSMG हॉस्पिटल, हमारे कमिश्नर जॉइंट कमिश्नर बैठे हैं, उन्होंने ही हमको ये हॉस्पिटल दिया है चलाने के लिए। कोरोना के समय हमारे पास ऑक्सीजन, इतने पेशेंट हमारे पास आ गए, OT में भी कोरोना पेशेंट थे, और हमने ऑक्सीजन कम हो गया क्योंकि जो हमको ऑक्सीजन 3 दिन चलता था वो 12 घंटा में खलास हो गया। वार्ड में भी ऑक्सीजन, ICU में ऑक्सीजन, सब जगह ऑक्सीजन। तो अभी मैं क्या करूं, तो हमारी बहन प्रतिभा बहन वहां रहती थी, फोन किया, दीदी ऑक्सीजन नहीं है। मैंने कहा एक बार बोल दिया, सबको बोल दो जहां जाए वहां जाए, क्योंकि नहीं तब तो ऑक्सीजन बिगर मर जाएंगे सब, तो आप अनाउंस करो। फिर एक सेकंड के लिए मैंने बोला वो कहां जाएंगे, सारी हॉस्पिटल फुल है, कोई किसको रखने वाला उस समय था ही नहीं। फिर मेरे को लगा मैं दूसरे को बोलते हम टेंशन नहीं करो, मैं टेंशन भी कैसे करूं, मैं मेडिटेशन में सामने बैठ गई, दो मिनट के बाद मेरे को टचिंग हुई। मैंने ये थोड़े दिन से रोज आ रहे थे हमारे पास, मैंने इसको फोन किया कोचर भाई को, मैंने कहा हमारे पास हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खुट गया है, 3-4 घंटा चले उतना ही है, आप कुछ भी मेरे को करो। बोला आप क्यों चिंता करती है, मेरी इंडस्ट्री में ऑक्सीजन बनता है। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा हो गया। तो मैंने कहा लेकिन आपका बनता तो है, परंतु हमको सिलेंडर, हमारे तो टैंक में आके डालते हैं ऑक्सीजन, इंडोक्स वाले, आइनोक्स वाले, इंडो ऑक्सीजन वाले। तो मैंने कहा आप क्या करेंगे। बोला वो भी चिंता नहीं करो, मेरा एक फ्रेंड है खुराना, उसकी बाजू में ही इंडस्ट्री है, वो बीएमसी के 2000 ये जिम्बो सिलेंडर कर रहे हैं, 100 में आपको उसमें से निकाल के दे देता हूँ। और मेरा ऑक्सीजन भर के आ गया और सब पेशेंट बच गए। तो समय पर देखो, आई वेला पर मदद होना बहुत बड़ी बात है।
बहुत बहुत धन्यवाद राजू भाई कि ज्ञान स्वरूप और योग स्वरूप अर्थात बनकर हम बैलेंस रखकर हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। हमारे बीच एक बहुत ऐसी हस्ती पहुंचे हैं, भले लेट से क्योंकि निकले थे। मैं बहनों से निवेदन करूंगी, हमारे बीच जो अरुण कुमार सिंह जो पहुंचे हैं, चेयरमैन ऑफ ONGC, उनका तिलक और बैच लगाकर वेलकम करें। एक ऐसे व्यक्तित्व है उनका, वो जितने ही महान है उतने ही निर्माण है। और अनुभवों की तो बहुत सारी खान है, सर्व विशेषताओं की आप पहचान हो आदरणीय भ्राता अरुण कुमार जी। आप ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC के चेयरमैन एंड CEO है। भारत और विदेशों में भी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में आपका 35 वर्षों से भी अधिक का आपका विख्यात अनुभव है। आप पहले भारत पेट्रोलियम BPCL के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं। आपने कई संस्थाओं में निमित्त बन उनकी प्रगति में बड़ी मुख्य भूमिकाएं निभाई। आपने मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री प्राप्त की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना से। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप भी 2 शब्द लिसनिंग रखें।
ओम शांति। मैं तो ये सोच के आया था कि माया से दूर रहूंगा, और आते ही आपने ऊपर बिठा दिया। और द्वंद्व में मैं सोचा था कि यहां कम से कम मुक्त रहूंगा, लेकिन फिर मुझे लगा कि अब मैं जब घुसा तो बोला ऊपर चले जाइए आप, मैं तो पीछे बैठने की तैयारी कर रहा था। तो जस्ट ये एक प्रारब्ध है या क्या है मैं नहीं जानता, इतना जानता हूं कि एक यात्रा है जो मैं चले जा रहा हूं। BPCL के चेयरमैन से रिटायर होने के बाद मैं, एक हमारे सहयोगी थे BPCL में, वो मेरे से पहले रिटायर हुए थे, जोशी जी इधर ही कहीं होंगे। हाँ, तो एक बार इन्होंने, जब मैं चेयरमैन था, तो इन्होंने कहा कि सर आप आइए। उसके पहले मैं थोड़ा बहुत टीवी पे शिवानी बहन और सुरेश ओबेरॉय वाला जो सीरीज था वो मैं सुनता था जब भी थोड़ा बहुत समय मिला तो। और समय का मिलना, उसके बाद मैं समझा कि समय अपने आप मिलता है अगर दिमाग, अभी बोला कोचर जी ने कि दिमाग की का ताला खुल जाए तो समय भी इनफाइनाइट हो जाता है। तो ये हमें एक दिन बोले कि आप चलिए, वहां उनका वो क्या बोलते हैं उसको, गिरगांव में एक सामने इंस्टीट्यूट है, उसमें उनका कार्यक्रम था। तो मैं सुबह ये लेके गए और वो काफी सुना मैं। उसके बाद बात आई गई हो गई, जब रिटायर हो गया मैं तो उसके बाद सोचा कि अब करूं क्या। बहुत सारे द्वंद दिमाग में कि फिर काम करूं कि नहीं करूं। तो एक दिन मैंने इनको पूछा कि यार वो कोई इंस्टीट्यूशन है क्या कि जहां मैं अपना एक सीमा ढूंढ पाऊं, जहां कि मैं एक डिसिप्लिन में बंध पाऊं, बिकॉज डिसिप्लिन में अगर नहीं रहूंगा तो दिमाग फिर इधर उधर भटकता रहेगा। तो बोला सर बाप के बगल में ही है गिरगांव में, अल्टामाउंट रोड में रहता था, क्या आप वहां चले जाइए। इन्होंने किसी को फोन किया और फिर मैंने उनको फोन किया और मैं पहुंच गया 7 दिन 1-1 घंटे वाला सुबह। उसके पहले से ही, लेकिन मैं सच आपको बोलूं, मैं पहले से ही वो भटक तो रहा ही था मैं कि इस कौन सी दुनिया जीऊं। जो मटेरियल वर्ल्ड में तो नौकरी वाले, खासकर बिजनेस वाला, मैं तो नौकरी वाला था, नौकरी वाले के लिए किसी भारत में कंपनी का चेयरमैन बन जाना वो लगता है कि अल्टीमेट हो गया, अब इसके ऊपर कहाँ जाना है, अब तो इसके ऊपर तैयारी करना है। तो वो था कि वो तो हो गया, अब क्या करूंगा इसको लेके। और जितने जीने के लिए जो चाहिए वो तो है, सोने के लिए 6x3 का बेड ही चाहिए और हवा में ऑक्सीजन सब जगह बराबर है। तो फिर मैं उस दृष्टिकोण से पर इन्होंने बोला तो मैं चला गया। और वो 7 नवंबर से मैंने वहां शुरू किया। तो मैं मात्र 5 महीने का प्रैक्टिशनर हूं और 1 महीना वहां चल रहा था मैं। उसके बाद आदेश आ गया कि आप ये सब में मत पड़िए, मतलब आप अभी थोड़ा और काम करिए। तो हमने कहा कि नहीं, मेरी इच्छा नहीं है, मैं अब काम करना नहीं चाहता हूं। सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक हर एक दिन खींचना, और खासकर जिन लोगों को थोड़ा ऑयल एंड गैस की जानकारी है, सारे रिफाइनरीज और सारे मार्केटिंग के इश्यूज, सोसाइटी के साथ इंटरफेस, तो थक गया हूं मैं चलते चलते। तो बोला कि अगर इसको थकना बोलते हैं तो आप भगवान सबको थकाए, तो आप थके नहीं हैं, आप फिर आ जाइए। तो उन्होंने फिर मुझे ONGC का चेयरमैन बना दिया। अब बना दिया तो फिर मैं, वो भी 7 दिसंबर को हुआ, 1 महीने के एग्जैक्ट बाद। अब वो शायद प्रारब्ध बोलिए या जो बोलिए, वहां से मैं फिर दिल्ली आ गया। और दिल्ली आया तो फिर मैंने पूछा कि यार सुबह उठता तो हूं, लेकिन वो बड़ा अच्छा डिसिप्लिन था गिरगांव वाला, और दिल्ली में कहाँ जाऊं मैं। तो एक इन्होंने ही फिर किसी को फोन किया, तो मेरे को ही फोन दिया, तो मैंने भी उनको फोन किया, रमा बेन आई डोंट नो इधर हैं कि नहीं है, या वो हैं शायद इसी एरिया में, जो खास खास वाला, जो जिसको हम लोग खेलगांव एरिया बोलते हैं। तो वहां फिर मैं जाने लगा, और वहां वो मैं कनॉट प्लेस में गेस्ट हाउस था, तो वहां से थोड़ा 30-40 मिनट सुबह में लगता था, और जाड़े उसमें ठंड का समय था और दिल्ली में फॉग भी बहुत होता है। तो हमारा ड्राइवर हमेशा बोलता था कि सर ये थोड़ा रिस्की है इतना सुबह में। तो मैं बोलता था ये कुछ नहीं रिस्क है, इसमें जो आनंद है वो इस रिस्क के सामने, जो हम लोग बिजनेस में हमेशा कॉस्ट बेनिफिट कैलकुलेशन करते हैं, तो जो बेनिफिट है वो इतना ज्यादा है कि कॉस्ट कुछ भी नहीं। तो वहां मैं जाने लगा, फिर वो मुरली सुनता रहा। तो मेरी यात्रा तो उतनी लंबी नहीं है जिसमें आप लोगों की जितनी लंबी है, लेकिन इतना जरूर है कि मैं बस चले तो मैं दिन में 2-4-5 घंटे कर सकता हूं। तो और अगर समय मिल जाए तो मैं बस चले तो मैं 7-8 घंटे करूं, लेकिन अभी समय नहीं भी मिलता है बिकॉज। और देखिए मैं एक ही बात मेरे को बोलना है, क्योंकि मैं बहुत छोटा हूं आप लोग के सामने। आज मेरी इच्छा थी यहां आने की, क्योंकि मैं देखना चाहता था, क्योंकि बहुत बार मुरली में सुनते 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 एक थोड़ा भाव हो गया कि चल के देखा जाए कि जगह कैसी है। तो जब इन्होंने भेजा हमें प्रोग्राम, तो हमने कहा कि मैं जाऊंगा, बट मैं जानता था कि वो जो दिल्ली का माहौल होता है खासकर, वो सडनली कोई हमारे से बड़े ऑफिस का अगर हुक्म आ गया तो हमारे को सब कुछ कैंसिल करना पड़ता है। तो वो चार दिन पहले हुकुम आया, पांच दिन पहले कि भाई 4 बजे जो है आज 21 को एक मीटिंग है. हमने कहा जो था मतलब जो डिजाइन है लगता है उस डिस्टर्बेंस वाला डिजाइन है. लेकिन इतना बढ़िया सौभाग्य हुआ कि तो मैंने फिर भी कहा इनको कि मैं रात की 8 बजे वाली फ्लाइट लूंगा, अहमदाबाद की एक फ्लाइट है, वहां से 1:30 बजे रात में पहुंचूंगा, 1:30 या 2 बजे, लेकिन फिर भी मैं 22 से अटेंड करूंगा. तो इन्होंने कहा सर आप कर लीजिए, क्योंकि आपकी इच्छा है तो 2 दिन जितना दिन आप कर सकते हैं उतना कर लीजिए. लेकिन देखिए सौभाग्य इतना बढ़िया है, वो मीटिंग आज वाली कैंसिल हो गई 4 बजे. जैसे ही हमारे ऑफिस को इतला दी बड़े ऑफिस ने कि भाई मीटिंग कैंसिल हो गई और पोस्टपोन हो गई रादर, तो हमने कहा फट से मैं 1:30 बजे की, क्योंकि सुबह उसके चक्कर में मेरा आज थोड़ा सेक्रीफाइस हो गया, इसलिए कि उसके चक्कर में हमने 2-3 बड़ी दूसरी मीटिंग रख दी सुबह में, और उसमें लोग आ गए थे सब जिनको दिल्ली आना होना था, तो वो करके मैं 1:30 बजे की फ्लाइट लेके इधर आया और आप सबके सामने मुस्कुरा के दूं. तो मेरे ख्याल से ये भी जो है कुछ, मैं इतना तो नहीं जानता कि क्या बोलूं इसको, बट ये भी एक डिजाइन था कि मैं आज शाम यहां रहूं और आप लोगों से मिल पाऊं. हमारी आशा है और मतलब ये विश्वास भी है कि जितना इसमें मैं तो चाहता था पूरा ही रमना 10-12 घंटे पर दिन, बट हो नहीं पाता है, वो कुछ न कुछ रहता है. बट 1 घंटा सुबह मैं ध्यान जरूर करता हूं, वो इधर बाएं दाएं हो जाए कुछ भी हो जाए, तो चाहे 4 घंटा ही नींद क्यों ना हो. लेकिन मैं अब ये भी रियलाइज कर रहा हूं कि आई डोंट नो कि 4 घंटे का स्लीप भी सफिशियंट है, क्योंकि और जब 4 घंटे में काम बन जाता है तो हम सोच रहे हैं कि ये लाइफ का हमने 9 घंटा पूरी जिंदगी सोया बर्बाद किया. तो इसके पहले थोड़ा, इसलिए आपको बोलूंगा जिनके बच्चे बच्चे छोटे हैं, थोड़ा इंक्लिनेशन जिनका है वो शुरू से ही लग जाए तो बेहतर है, ताकि उनको जिंदगी में अगर 4 घंटे पर डे मिले तो साल में 1400 घंटा होता है, और 1400 घंटा एक मैनेजमेंट में एक थ्योरी है कि कोई भी काम अगर 10,000 घंटे कर लिया जाए तो उसी में से कोई तेंदुलकर बन जाता है या उसमें कोई पेले बन जाता है. तो अगर 4 घंटा पर डे कोई यूथ में ही शुरू कर दे तो वो 10 साल में तो महारत हो जाएगा. चलिए हमने लेट शुरू किया, 60 में शुरू किया, 70 में तो मैं भी 70 तक नहीं पर 75 आते आते तो मैं भी पूरा हो जाऊंगा कि 10,000 घंटे मैं कर लूंगा. तो आप सबके लिए एक अच्छा योग, और बहुत अच्छी बात आपने कही कि योग के साथ ज्ञान भी होना चाहिए, और ज्ञान जो है वो योग अकेले से काम नहीं चलेगा, और ज्ञान का स्रोत सबसे पहले मुरली, तो ये दोनों को मिला बगैर काम नहीं चलेगा. ये द्वंद है, द्वंद समास हम लोग बोलते थे कि दोनों साथ हो तभी ये खेल चलेगा. सिर्फ अगर कोई बोले कि मैं योग करूंगा और ये नहीं करूंगा तो धीरे धीरे वो बिखर जाएगा, और कोई बोले कि सिर्फ मैं ये सुनूंगा वो नहीं करूंगा तो वो भी काम नहीं आएगा. तो मेरा सिर्फ ये कहना था कि आप दोनों, हमारा मेरा एक्सपीरियंस तो ये है कि दोनों जो भी अभी तक है कि वो दोनों हो तो अति उत्तम, और दोनों के बगैर शायद ये काम बनने वाला नहीं है. आगे जैसा ऐसा होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा. मैं भी आपके तरह 2 दिन कल और तरसों में चला जाऊंगा, इसलिए कि फिर किसी ने एक बड़ी मीटिंग रख दी है शाम में 6 बजे, और उसमें हमारे पास चॉइस नहीं होता है कि हम बोल दें कि हम नहीं हैं तो नहीं है तो बड़ा फिर उसके बड़े मतलब दूसरे रूप और आयाम आ जाते हैं. तो इसलिए 2 दिन आपके साथ रहूंगा और इस आशा के साथ कि दो दिन में जम के योग हो और जम के ध्यान हो, मतलब ज्ञान हो, दोनों मिल के हो और साथ साथ हो, तो इससे और अच्छा बात क्या हो सकता है, क्योंकि उसकी ऊर्जा कुछ और होती है. मैंने एक बार करके देखा हुआ है, इसलिए भी मैं हॉल में आधा घंटा पहले, मैं 1/4 घंटा पहले पहुंचता हूं, पहले जहां भी जाता हूं, ताकि मैं आधा घंटा ध्यान कर पाऊं. और संभव बहुत ऐसे लोग हैं जो मुरली के आधे घंटे 40 मिनट पहले ही आ जाते हैं वहां. और जिस दिन मैंने नोटिस किया है कि जिस दिन ज्यादा लोग आते हैं उस दिन मेरा ध्यान थोड़ा अच्छा होता है, और जिस दिन थोड़ा कम लोग आते हैं तो उसमें थोड़ा सा एक ही होता है. इसका मतलब है कि दूसरे की शक्ति भी बगल से मिलती, तो इसीलिए मैं वो भी एक पर्पस था कि इकट्ठे अगर इतने लोग हैं और इतने लोग आए हैं अपने मन से आए हैं तो डेफिनेटली कुछ तो होगा तभी आए हैं, अदरवाइज क्यों आएंगे कोई. तो इसलिए इस आशा के साथ कि कल परसों हमारा वक्त बढ़िया से गुजरे। बहुत समय भी हो गया है, 9:15 बज रहा है, मेरी वजह से भी शायद देर हुआ होगा तो क्षमा कर देंगे हमें, लेकिन यू नो क्या बोलूं मैं, वो बड़ा मुश्किल है बोलना लेकिन क्षमा मांगना आसान है, तो कारण नहीं बताऊंगा लेकिन क्षमा मांग लूंगा। थैंक यू, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद राता अरुण जी कि क्षमा की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रोग्राम तो चल ही रहा है। और ये सही बात कही कि संगठन में एक बल होता है और इसी संगठन से, सहयोग की शक्ति से ही आज हम ये सुखमय संसार बनाने जा रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं। मानव सेवा में सदा तन मन धन से समर्पित, सदा अपने साहस त्याग और परिश्रम से हर समस्या को पार कर आगे बढ़ने और बढ़ाने वाली महान आदरणीय हस्ती भ्राता चंद्रशेखर चौरे जी आज हमारे बीच उपस्थित है। आप ब्रहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जॉइंट म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं। आपका जन्म महान स्वतंत्र सेनानियों के घर में हुआ, जिन्होंने समर्पणता के भाव से गरीब व असहाय की सेवा में अपना जीवन दिया। आप सिविल इंजीनियर के रूप में बीएमसी में कार्यरत हुए और अपनी कुशलता के दम पर आपने कई विशिष्ट जिम्मेवारियों को बखूबी से निभाया। कोविड महामारी के समय में भी आपने कई नई नई स्ट्रेटेजीज प्रोजेक्ट प्रयासों के द्वारा बहुत सेवाएं दी। इसके अलावा आप 20 से भी अधिक स्कूल से जुड़कर उन बच्चों की सेवाएं करते रहे जिनकी स्पेशल नीड्स है। तो मैं निवेदन करती हूँ आदरणीय भ्राता मिस्टर चौरे जी को कि आप दो शब्द।
थैंक यू दीदी। मैं बड़े कठिन समय पे बुलाया गया हूँ। मेरे पहले इतने महानुभाव ने इतना सुंदर विवेचन यहाँ किया है, अपने अपने फील्ड में जिन्होंने बहुत महारत हासिल की है, ऊंचाइयों को छुआ है, उनके बाद कुछ कहना मेरे लिए बहुत कठिन है, लेकिन आदेश हुआ है तो जरूर मैं कुछ 2 मिनट जरूर आपके लूंगा। मेरी आई यानी मेरी माँ वो शिक्षिका रही है, तो कोई भी भाषण की शुरुआत करती तो इस तरह करती कि चरा चरा वास करणारी अदृश्य महान शक्तिला प्रणाम करून मी माझ्या भाषणा सुरुवात करते। मायने ये है कि मैं अपनी भाषण की शुरुआत उस हर चर में और अचर में वास करने वाली उस अदृश्य महान शक्ति को अभिवादन करके करते हूं। तो उस वाक्य से क्ल्यू लेकर मैं यहां मंच पर विराजमान योगिनी दीदी, डॉक्टर निर्मला दीदी और सभी सम्मानित मंच पर आमंत्रित गणमान्य अतिथि, उन सबको प्रणाम करता हूं। और आप सब जो इस वर्कशॉप के लिए अगले 2 या 3 दिन सम्मिलित होने वाले हैं, उन सबको भी और इस पुण्य भूमि में जितनी भी अचर चीजें हैं उनको भी प्रणाम करता हूं। पता नहीं कितने लोग आज सुबह यहां पहुंचे और मैं स्केड्यूल देख रहा था, उसमें मैंने देखा कि मॉर्निंग सेशन में एक सेशन था जिसमें कहा गया था कि व्हाई आई एम हियर, और उसका क्ल्यू लेकर मुझे लगा कि मुझे कुछ 1 या 2 चीजें बोलने का अवसर जरूर मिलेगा। जितने भी मेरे पहचानने वाले लोग हैं या जो मुझे बहुत करीब से नहीं जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, उन लोगों को मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे लगता है कि मैं एक नास्तिक आदमी हूं, और वो इसलिए लगता है कि मैं कभी खुद होकर किसी मंदिर में नहीं जाता हूं, कोई पूजा पाठ नहीं करता हूं, कोई खास धार्मिक बातों पे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता हूं। और जो करीब लोग हैं मेरे, वो कभी कभार अगर पूछ लेते हैं, क्योंकि मैं कोई भविष्य में विश्वास नहीं करता हूं, कोई डेस्टिनी में विश्वास नहीं करता हूं, किसी प्रारब्ध में विश्वास नहीं करता हूं, तो उनको लगता है कि ये जरूर नास्तिक होगा। और जब भी कोई मुझे ये पूछता है कि क्या आप भगवान पे विश्वास रखते हो, तो उसका उत्तर देने में भी मैं हिचकिचाता हूं, और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उसका उत्तर देता ही नहीं हूं। इसलिए नहीं देता हूं कि ये कहना कि हां मैं भगवान में विश्वास नहीं रखता हूं, ये मुझे बहुत अरोगेंट बात लगती है, बहुत खुद को बड़ा समझने वाली बात लगती है कि नहीं मैं विश्वास नहीं करता हूं। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ये भी लगता है कि अगर मैं ये कहूं कि हां मैं भगवान में विश्वास रखता हूं, तो वो पहले वाली से भी बड़ी अरोगेंट चीज लगती है मुझे। तो पहली वाली तो मुझे जरूर अरोगेंट लगती है, लेकिन दूसरी वाली भी मुझे बहुत ज्यादा अरोगेंट लगती है कि यह कहना कि हां मैं भगवान को जानता हूं या भगवान को मानता हूं, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है गॉडलीनेस पे, भगवत्ता पे। और मैं देखता हूं इतने लोगों में भगवत्तापूर्ण व्यवहार, इतने लोगों में वो गॉडलीनेस, कि उस पर मेरा विश्वास हमेशा जितने लोगों से मैं मिलता हूं, जितने लोगों से मैं बातें करता हूं, बढ़ते रहता है। जितनी संस्थाएं हैं, जितने लोगों को मैं मिलता हूं, जैसे हमारे एक दोस्त है, बड़े होशियार, बहुत ही टैलेंटेड, एक चार्टर्ड अकाउंट है, मेरी पत्नी के भाई के बहुत करीबी दोस्त, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, बहुत बड़ी कंपनी में काम करते थे, फिलहाल वो इस्कॉन में ब्रह्मचारी है। तो बहुत बार मैं उस मंदिर में जाता हूं, मंदिर में कम जाता हूं, उनको मिलने ज्यादा जाता हूं। उसी तरह ब्रह्म कुमारीज में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो जब भी मुझे मिलते हैं या मैं उनको मिलता हूं, तो मुझे जो अनुभूति होती है गॉडलीनेस की, मुझे जो लगता है कि इन लोगों में कुछ ऐसी चीज है कि जिससे बहुत आनंद आता है, इन लोगों को देख के ही लगता है कि इनमें कुछ अलग है, इनमें कुछ लोगों को या दूसरों को बांटने की क्षमता है, दूसरों को देने की क्षमता है, तो इस पे मेरा विश्वास हर वक्त बढ़ते रहता है। तो मैं वापस आऊंगा उस क्वेश्चन पे कि व्हाई आई एम हियर। पता नहीं मॉर्निंग के सेशन में ये क्वेश्चन किस संदर्भ में पूछा गया था, लेकिन मेरे लिए संदर्भ ये हुआ कि उस गॉडलीनेस को समेटने के लिए मैं और मेरी वाइफ इस अवसर का पूरा पूरा उपयोग करेंगे, और मुझे विश्वास है कि इसमें हम सफल होंगे। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सारे सवालों का जवाब मैं सोचती हूँ कि 2-3 दिन में मिल ही जाएंगे, और जो संकल्प लिया है वो पूरा करना ही है। सत्र के आखिरी पड़ाव पे हम पहुंच रहे हैं। हमारे आदरणीय मोहन भाई पटेल, हम सबका धन्यवाद करना चाहते हैं आपको। 13 वर्ष की किशोर अवस्था में ईश्वर विश्वविद्यालय से आप लौकिक परिवार सहित जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपने मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, मुंबई में बिल्डर एंड डेवलपर का बिजनेस आपका था। इस अनुभव के कारण इस ज्ञान सरोवर माउंट आबू के निर्माण में परचेस मैनेजर के रूप में आपने विशेष सहयोग दिया। पिछले 35 वर्षों से आप संस्था के मुख्यालय से सेवाएं दे रहे हो। वर्तमान समय आप ब्रह्मा कुमारी संचालित BACS MG हॉस्पिटल मुंबई में ऑनरेबल चीफ ऑफ पब्लिक रिलेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस के पद पर सेवाएं भी दे रहे हो। आप बिजनेस इंडस्ट्री विंग के एग्जीक्यूटिव कमेटी के लाइफ मेंबर भी हैं। तो आदरणीय मोहन भाई से मैं निवेदन।
ओम शांति। इतने सब महानुभवों के सुनाने के बाद मैं क्या सुनाऊं? देखो, अंतिम चरण में आए जो हमको आपको बैठे हैं, जो आए हैं सब यहां, तो मैं तो कहूं कि हम जो यात्रा करने जाते हैं कैलाश मानसरोवर की, तो ये भी मानसरोवर जैसे ज्ञान सरोवर है। तो ज्ञान सरोवर में यात्रा करेंगे तो हम उसमें डुबकी लगाएंगे तो हम पवित्र बनेंगे। और देखो कैसे कहते हैं ना, नर सो ऐसी करनी करे सो श्री नारायण बन जाए, और नारी सो ऐसी करने करे सो श्री लक्ष्मी बन जाए। ऐसी अवस्था हमारी हो सकती है। तो देखो, जैसे कहते हैं कि कोचर साहब ने भी सुनाया कि ज्ञान और योग की बातें की, तो संस्था में पहला ही ये नियम है ज्ञान योग धारणा और सेवा, चारों इक्वल चलते हैं। देखो कोई भी वाहन होता है उसके चारों पहियों अगर ठीक रहेंगे तो गाड़ी ठीक चलती है, एक पहिया अगर ठीक नहीं है तो गाड़ी ठीक नहीं चलती है। तो हमें परमात्मा यही सिखाते हैं कि कैसे हमको इस तरह चलना है, क्योंकि देखो हमने भी बिजनेस किया है, बड़े बिजनेस हम करते थे, टेंडर लेकर के भी हम काम करते थे, गवर्नमेंट के भी काम करते थे, तो टेंशन तो आती है सबको। लेकिन कहते हैं ना कि जो जहाज जो है उसको सारा समुद्र का पानी जो कितना भी इकट्ठा हो जाए लेकिन उसको डुबा नहीं सकता है, जब तक जहाज उसको इजाजत न दे अपने अंदर आने की। तो हमारी मन की भी यही बात है कि हम जब तक कोई ये व्यर्थ संकल्प या जो टेंशन वाली बातें हैं उसको जब तक हम अंदर आने नहीं देते हैं तब तक हम प्रफुल्लित रहते हैं, और जो कार्य करना चाहते हैं वो हम कर रहे हैं, हमें हमेशा उसमें सफल होते हैं। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। दूसरी बात हम कहते हैं कि देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं एज ए बिजनेसमैन। कहते हैं कि वो एक राजा थे, राजा की रानी जो थी और उसकी बच्ची थी, मतलब राजकुमारी जो थी, वो खेलते खेलते राजमहल के बाहर चली जाती है एक बार। तो क्या होता है कि उसको कंकर चुभ जाता है पेट में, पैर में कंकर चुके हो तो राजा के पास फिर आती है तो लुई लुहान होकर के आती है। तो उन्होंने राजा तो तुरंत वजीर को बुलाते हैं, तो वजीर क्या करेंगे कि अभी चमार को सारे बुलाओ और सारी जितने भी रास्ते हैं गांव के उस पर ये चमड़ा बिठा दो ताकि मेरी राजकुमारी कहीं भी जाए तो उसको पैर में कंकर नहीं लगना चाहिए। तो अभी ये तो वजीर राजा का ये था, तो वजीर क्या करें, उन्होंने सारे चमड़े इकट्ठे किए। तो अभी देखा तो इतना चमड़ा कहां से लावे जो सारे शहर में हम इकट्ठा करके लगा सकते हैं, पर सारे रास्ते में हम बिछा सकते हैं। तो वो आखिर में वो जाता है, उस टाइम बीरबल जी थे तो उनके पास जाता है कि बीरबल जी अभी आप ही रास्ता बताओ, राजा जी को तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, हम क्या करें। तो बीरबल जी कहते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि क्यों ना राजकुमारी को ही हम ऐसी मोजड़ी अच्छी चमड़ी की बना देवे जो उनको कहीं भी जाए कुछ कंकर नहीं लगे। तो देखो समस्याएं तो आनी है हमको, तो हमें समस्याओं में अपना समाधान ढूंढना है। अगर हम अपना समाधान, देखो जैसे अभी ठंडी की सीजन चलती है तो कैसे हम हीटर लगा देते हैं, गर्मी की सीजन चलती है तो कैसे हम पंखा या एसी लगा देते हैं अपने उसके अनुसार। तो ऐसे हमें जो ज्ञान योग जो है बैलेंस सिखाता है हमको, तो इस बैलेंस से अगर हम चलते रहेंगे तो हम सदा सफल रहेंगे और कभी भी हमको कोई कठिनाई या तकलीफ नहीं आएगी। कहते हैं ना कोई भी तूफान भी अगर आता है तो कुछ ना कुछ वो तोहफा जरूर लाता है। तो तूफान आने के बाद हम अगर रुक जाते हैं तो हमें वो तोहफा प्राप्त नहीं होता है। तो उसमें हमको साहस रखते हैं, हमारे बिजनेसमैन जितने भी है वो साहस रखने में तो माहिर है, कुछ भी हो जाता है लेकिन बिजनेस में कभी पीछे नहीं हटते हैं। तो मैं कहूँ, सबसे सर्वप्रथम कहूँ शिव परम पिता परमात्मा का शुक्रिया अदा हम करते हैं जिन्होंने हमको ये सारा गाइडलाइंस दिया, सारा ज्ञान सरोवर जैसे हम उन्होंने बनाया। हमारी दादी प्रकाशमणि जो थी, जीप थी, वो आज भले सूक्ष्म में हमारे साथ है, स्थूल रूप में हमारे साथ नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं, देखो सर्व के सहयोग से कैसे काम होता है। ये 34 एकड़ में फैला हुआ ज्ञान सरोवर है, वो आप सब बिजनेसमैन आप काउंट करेंगे दिन भी तो देखो तो 26 मंथ में इसका काम पूरा हुआ है। ये जो इम्पॉसिबल काम है वो भी परमात्मा के सबके सहयोग से पॉसिबल हो जाता है। तो ऐसे में हमारे शिव परमात्मा शिव पिता का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जैसे उसने साकार तन भी लिया जो जिसको हम ब्रह्मा नाम से कहते हैं। तो साकार तन भी देखो हमारे लिए कितनी सौभाग्य की बात है कि वो भी एक बिजनेसमैन थे, जैसे हम बिजनेस थे उसका शरीर का आधार लिया उसने तन का, तो हमारे लिए तो कितना ईजी हो जाता है। देखो कैसे उसने हीरो का व्यापार किया और कैसे अभी वो स्थूल हीरो से ज्ञान हीरो में ज्ञान रत्न बांटने में लग गए हैं। तो ऐसे हम भी धीरे धीरे यहाँ आए हैं, तो 3 दिन जो सुनेंगे उसमें भी हम भी अपने आप भी भरपूर करके जाएंगे और दूसरों को भी हम जा करके भरपूर कहेंगे। जब हम जाएंगे तो यही गीत गा करके जाएंगे कि वो गीत भी आपने सबने सुना होगा कि पाना था सो पा लिया अब काम क्या बाकी रहा। ये गीत गा करके हम सब जाएंगे दुनिया में कि हमें कुछ नहीं है। दूसरा ये गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। अब सब यहां आकर के जो किसी भी रूप में आए हैं, किसी भी बिजनेस में आए हैं, चाहे हमारे डॉक्टर साहब भी आए हैं, सब यही गुण गा करके जाएंगे, गीत गा करके जाएंगे और जाकर के दूसरों को सुनाएंगे तो उनके भी देखो कितना भविष्य बनता है। तो ऐसे हमारी दादी, हमारी देखो यहां भी दोनों बड़ी दादियां आई है, डॉक्टर निर्मला जी, हमारी योगिनी दीदी, और सब नाम नहीं लेता हूं, सारे महागुण जो है हमारे स्टेज पे बैठे हैं और सब आप सब अपना समय निकाल के आए हैं, उस सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। साथ साथ में हमारे ज्ञान सरोवर परिसर के साउंड डिपार्टमेंट, लाइट डिपार्टमेंट, आवास निवास, जो भी आप 3 दिन ठहरे, जो भी सेवा करेंगे दिल से, आप जैसे कहा ना गीता दीदी ने भी कि आप आपके घर से आए हैं, घर के मेंबर है सब सारे। तो परमात्मा को अगर हम पा लिया और परमात्मा से हमने बुद्धि योग लगा दिया, जो कहते हैं ना कि प्राप्ति का आधार ही सारा जो है वो हमारा जोड़ है। अगर किसी से हमारा बुद्धि का जोड़ है तो देखो उसकी जो वो दुखी होते हैं तो हम दुखी होते हैं, वो सुखी होते हैं तो हम सुखी होते हैं। तो परमात्मा जो है वो तो सर्व से उत्तम है, सर्व से अथॉरिटी है, सुप्रीम पावर है। तो उसके अगर हम कनेक्ट रहेंगे तो हम भी सुपर पावर के जैसे बन जाएंगे। ऐसी मेरी सबसे विनंती है। ओम शांति।
आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मोहन भाई, और आप सभी अंत तक बने रहे और इस संगठन की शोभा देखते ही बनती है। तो पुनः हमारे मंचासीन सभी महानुभावों का, वरिष्ठों का और आप सभी महान अतिथिगणों का बहुत बहुत स्वागत है। हम प्रोग्राम के अंतिम चरण पर पहुंच गए हैं। तो अभी एक अनाउंसमेंट है कि जो भी सेवाधारी और गाइड हैं जो आए हुए हैं, उन सभी के लिए सौगात यहाँ पर मंच के एक साइड पर दी जाएगी। तो वे सभी पहले ही यहाँ आ जाएं साइड में, ताकि वे अपनी अपनी सेवाओं में जाकर अरेंजमेंट कर सके हमारे गेस्ट का। तो वे सभी जल्दी ही शीघ्र ही आ जाएं, ताकि हमारे सौगात के जो निमित्त भाई हैं वे भी सुचारू रूप से सभी को दे सके और मैनेज हो सके। और अभी मैं अपनी ब्रह्म कुमारी बहनों को अनुरोध करूंगी कि वे शॉल लेकर आए, और दीदी जी द्वारा हमारे सभी मंचासीन महानुभावों का हम सम्मान करेंगे। सेवाधारी गाइड प्लीज एक साइड पर आप आ जाइए। तो हम सभी की ओर से भी सम्मान की इस प्रक्रिया में हम सहयोगी हैं। सेवाधारी गाइड कृपया सहयोग दें, शीघ्र ही लेफ्ट साइड, आपकी राइट साइड पर आ जाएं। हमारे अतिथिगणों को शॉल, ईश्वरीय सौगात और टोली द्वारा सम्मानित किया जा रहा है, और हमारी बहनें सभी सेवाधारी और गाइड को भी ईश्वरीय सौगात प्रदान करेंगी। सभी भी पार्टिसिपेंट्स जो हैं कृपया बैठे रहें कुछ क्षण और, आप लोगों के लिए भी ईश्वरीय सौगात यहाँ से प्रदान की जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये दो ऑप्शंस हैं, एक तो है डायरी और पेन, जो कि हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है। तो ये भाग्य लिखने की कलम और ये सुंदर डायरी आपको यहाँ प्रदान की जाएगी। तो या तो आप ये डायरी पेन ले सकते हैं, या ये सुंदर लक्ष्मी नारायण का फ्रेम जो कि हमारे जीवन के लक्ष्य को स्पष्ट करता है ये भी।